हमसे निवेदन किया गया था कि आप राधा तत्व, कृष्ण तत्व, इन सब के विषय में तो काफी बताते हैं, इस संसार के सत्यता का बोध कराते हैं, ये सबने सब विषयों में बताते हैं, परंतु एक बहुत गंभीर विषय है जिस विषय पे आपने पिछले 10 वर्ष में एक बार भी नहीं बताया विस्तृत रूप से। और ऐसे संतों से सुना है कि आचार्य मुख से समझने पे ही ये विषय समझ आते हैं, तो ये निवेदन आया कि गुरु तत्व पे हम कुछ प्रकाश डालें, ताकि जो ये भक्तजन हैं या जो अन्य देश विदेश में जो भी सुनते हैं या जो आने वाले समय पे ये मूल रूप सत्र रहे, जिससे सब लोग बारंबार सुन के लाभान्वित हो सके। तो आज गुरु तत्व की विस्तृत विवेचना की जाएगी शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि तत्वम गुरु समम नास्ति, भारत पुराण बोलती है कि तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु के समान तत्व नहीं है। नास्ति तत्वम गुरु और परम, भगवत तत्व है वो समझना इतना मुश्किल है, शक्ति तत्व है, पर नास्ति तत्वम गुरु और परम, गुरु से ऊपर कोई तत्व नहीं है। तो ये समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समझे बिना भक्ति में प्रगति तो अलग बात है, भक्ति में ठहरना भी मुश्किल है। जैसे रामचरित मानस में बताया गया है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम, वही मेरा प्रिय सेवक है जो मेरा अनुशासन मानता है, श्री राम कहते हैं मानस में। अनुशासन मतलब जो वो कहते हैं, जो वो मानता है, वही उनका प्रिय सेवक है। भगवान ने जो बोला उनको जो मानेगा। भक्ति मतलब क्या है? मेरे ईश्वर की बात मानना, सरल भाषा में मेरे ईश्वर जो बोल रहे हैं उनकी बात को मान जाना। परमेश्वर श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उनकी बात को मानना, जो मानता है वो मेरा प्रिय भक्त है, कोई भी मानता है, और जो नहीं मानता वो कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो भगवान ने किस प्रकार का विधान दिया है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान आदि पुराण में बताते हैं, नामे भक्त जना पार्था ना भक्ताश ते जना, मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास तो में भक्त तमामतः। इसका मतलब है श्री कृष्ण की बात मानना भक्ति है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं जो ये सोचता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तव में भक्त। भगवान राम क्या कह रहे हैं? जो अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है। तो भगवान ने ये विधान बनाया है कि उन तक सीधे पहुंचा नहीं जा सकता, वे गुरु के माध्यम से किसी भी जीव को स्वीकार करते हैं, ये उनका विधान है, कृपा करने का विधान है श्री कृष्ण का। परम स्वतंत्र ईश्वर, परम स्वतंत्र उनकी लीला, सृष्टि लीला, नित्य लीला, उन्हीं की इच्छा से ही, उनको प्रसन्न करके ही जीव का कल्याण हो सकता है। परम शांति, भगवान की कृपा, ये जो है उनकी, जब हम विधान के अनुसार चलते हैं तो ये उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनका विधान क्या है? यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादा न गति कुतो अपि। यस्य प्रसादा, गुरुदेव की कृपा से उनकी कृपा मिलती है, गुरुदेव की कृपा से उनकी कृपा, उनकी कृपा से गुरुदेव की कृपा नहीं मिलती। गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण नेचुरली कृपा कर देते हैं, स्वभाव से ऑब्लाइज हो जाते हैं कृपा करने के लिए। अब मन में आ रहा होगा कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा भगवान से सीधा संबंध है, तो इसमें गुरु कहां से आ गए? हम भगवान के सनातन अंश हैं, ममेव अंशो, सब संबंध उनसे हैं, इसमें गुरु कैसे आ गए? नहीं, बीच में कोई नहीं आया। तो आप कह रहे हैं गुरु के द्वारा कृपा, हाँ, पर बीच में कोई नहीं है, वह स्वयं गुरु रूप में प्रकट होके भगवत भक्ति रसमय विग्रह रूप में आके शिक्षा देते हैं कि मेरे को कैसे भजा जाए। बीच में कोई नहीं है, वो खुद ही हैं, एक और रूप में स्वयं वह हैं और कोई नहीं है। इसी को शास्त्रों में भगवान ने बताया है, उद्धव को भगवान संदेश में बता रहे हैं 11वें स्कंद में, आचार्य माम विजानियान, कि जो आचार्य हैं उनको मेरा ही स्वरूप मानो। ना अब मनहित कर ही चित, ना मर्त बुद्धे असोयात सर्वदेव मयो गुरु। जो आचार्य हैं उनको ये नहीं मानो कि मेरा प्रकाश है या मेरी तरह है। भगवान ये नहीं बोल रहे, उद्धव को निर्देश दे रहे हैं कि आचार्य को कैसे मानना है। देखो, हम श्री कृष्ण भक्ति में हैं, हाँ, नीलमणि की पूजा कर रहे हो, ये नीलमणि कैसे पता चला कि नीलमणि है? श्याम श्याम है, ये कैसे पता चला? श्याम श्याम वर्ण के शास्त्रों से पता चला। अब श्याम की भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से करनी है, कैसे पता चला? शास्त्रों से। उन्होंने खुद ही तो बोला है कि मेरे को कैसे पूजो, मैं ऐसा हूं। अब मेरे को किस तरह पूजना है वो उद्धव को संदेश देके बता रहे हैं जन कल्याण के लिए, कि आचार्य माम विजानियान, आचार्य को मेरी तरह या मेरे जैसा नहीं मानो, मैं ही आचार्य रूप में आता हूं जीव कल्याण के लिए, ये समझो। इसी संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भागवत के अन्य श्लोक की व्याख्या में, ये नहीं सोचना साधक को कि ना मर्ते बुद्धे असुयत, कि ये कोई मनुष्य हैं। गुरु मनुष्य नहीं होते, हम किसी मनुष्य से दीक्षा नहीं लेता कोई भी। हम जब ये अंदर से निश्चिंत तो जाते हैं कि हरि ही इस रूप में आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए, तो हम शरणागत होते हैं। अगर इतना सा भी संदेह बीच में रह जाए, मनुष्य मान ले व्यक्ति, तो जो भक्ति कभी भी करी थी या भी कर रहे हैं या करेंगे, वो सब शून्य हो जाती है, सब शून्य हो जाती है। यदि मानव मान लिया से कि हाँ ये तो ये भी एक साधक है या एक ये भक्त है, हाँ ज्ञान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यही बात भगवान श्री कृष्ण आचार्य मां भी ना अवमान्य कर ही चित, कभी अवहेलना मत करना, कभी भी अवमानना मत करना, क्योंकि सर्व देव मयो गुरु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि साक्षात भगवत इति भगवत अंश बुद्धिरपि गुरुना कार्योति भवेत। साक्षात भगवत इति, ये मानो कि वो साक्षात भगवान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये मत मानना कि भगवान के अंश हैं, ये मानना भी अपराध है। मानव मानना तो कितना बड़ा अपराध होगा, ये मानना अपराध है कि वो भगवान के अंश हैं, ये मानना भी। साक्षात भगवान के अंश तो और रूपों में भी हो सकते हैं, साक्षात राधा कृष्ण युगल वपु कृपा वपु लेके करुणा घन अवतार लेके मेरे समक्ष प्रकट है मेरा उद्धार करने के लिए। वे इस रूप में मेरे समय प्रकट हैं, भक्ति करके याजन करके दिखा रहे हैं, भक्त रूप भक्तमय विग्रह बन के स्वयं आके दिखा रहे हैं कि मेरे को कैसे प्राप्त किया जाता। भगवान को प्राप्त करने की विधा भगवान ही बता सकते हैं, भगवान ही सिखा सकते हैं, ये नर के बस की बात नहीं है। इसलिए उनको कोई जान नहीं सकता उनकी स्वेच्छा के बिना, क्योंकि वो स्वयं को जनाना चाहते हैं। इसी वजह से वह स्वयं प्रकट होते हैं स्वयं को जनाने के लिए। तो विश्वनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं कि इति भगवत अंश बुद्धिर अपि गुरु ना कार्योति भवेत, अंश मत मानना भगवान का। दुर्बुद्धिस्तस्य श्रुतम भगवन मंत्राधिक श्रवण मनन आदिकम च व्यर्थम इति अर्थः। इसका मतलब है कि यदि भगवान का अंश या कोई मानव ही मान लिया, तो श्रुतम भगवान भगवान के बारे में जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं या मंत्र आदि का, कोई मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, कुछ भी करते हैं, मनन करते हैं, ये कितना बता रहे हैं, श्रवण करना, मनन भी बोला, आदिकम मतलब इसके अलावा भी जो भी करते हैं भक्तिमय क्रियाएं, च व्यर्थम इति अर्थः, व्यर्थम वो व्यर्थ हो जाती है, वो जीरो से गुणा हो जाती है। अगर माना मान लिया तो जो जप तप पूजा भक्ति जो भी क्रिया करी वो शून्य से गुणा करना, ये हम कम से कम करके बता रहे हैं, आगे बताएंगे इसका वास्तविक अर्थ क्या है, परंतु कम से कम यह अर्थ होता है मानव मानने का कि सारी चीजें शून्य हो जाती, ये मिनिमम से स्टार्ट होता है ऐसा। क्योंकि श्री कृष्ण जैसे बता रहे हैं अनेकों जगह पे, आचार्य माम विजानियान, मुझको आचार्य रूप में मानो, फिर चैतन्य चरितामृत में गुरु कृष्ण रूप होन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गणे, गुरु कृष्ण रूप होन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु कृष्ण का स्वरूप है, शास्त्र का प्रमाण है, गुरु रूप में कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गण, गुरु रूप में कृष्ण भक्त गणों के ऊपर कृपा वर्षण करते हैं। ये मन में आ सकता है कि ये भगवान सीधा कृपा क्यों नहीं करते, मन में आ सकता है, ये इतना गंभीर रहस्य है जो जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में बताया है, और बाबा महाराज ने दो जगह बताया है अपने ग्रंथों में, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये है श्लोक 13 की व्याख्या पढ़िएगा, और एक बताया है साधे साधन तत्व में, हम आपको दोनों से समझाएंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि वो सीधे करुणा क्यों नहीं करते या कर पाते, ऐसा समझो कर नहीं सकते हैं क्यों, वो खुद बता रहे हैं जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में 180 नंबर की व्याख्या में, उसका सार मर्म समझें कि भगवान आनंद की मूर्ति हैं, परमानंद घन हैं, अपाप विद हैं, मतलब उनमें कोई पाप छू नहीं सकता, ये जीवों से उनकी डिफरेंस है, विलक्षणता है कि वो आनंद घन हैं, होंगे नहीं, हर समय आनंद में हैं, डूबे हुए, भीगे हुए कुंज में, वो आनंद में भीगे हुए हैं, समझो कौन है भगवान, ये वाले भगवान नहीं होते, आशीर्वाद दे रहे हो, कष्ट निवारण के भगवान नहीं है, वो आनंद में डूबे हुए व्यक्ति हैं निरंतर, अरे गोपियों की ओर नजर नहीं घुमाते वो, जब राधा रानी का यूं नहीं देख सकते, आंखें टेढ़ी नहीं कर सकते वो, ऐसे डूबे हुए हैं। अब ये भगवान जो हैं परिपूर्ण सुख स्वरूप भगवान, इसमें दुख छुएगा कैसे, दुख तमोगुण का लक्षण है, तो तमोमय वृत्ति कोई भी वो आनंद में डूबे को छुएगी कैसे, ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं, कितनी सुंदर व्याख्या है। आदित्य वर्ण तम सह परस्तात, मतलब तमोगुण की वृत्ति को छू नहीं सकती है दुख इत्यादि, तो श्रुति भी कहती है यही बात, तो उन्हें इसलिए जीव का दुख स्पर्श नहीं कर सकता भगवान को, जीव का कोई भी दुख है ना वो भगवान को छू नहीं सकता, छुए कैसे, वो आनंद में डूबे पड़े हैं। दूर है सृष्टि आदि वार्ता राधा रसुदा ने भी कि भाई सृष्टि आदि की वार्ता तो दूर जाए, अरे दूर भेजो भाई, ये सब क्या है, ये सृष्टि ये क्या है, सृष्टि क्या होता है, वो आनंद में डूबे हुए हैं। अरे माँ यशोदा को नहीं इसके बारे में कुछ सोचते नहीं वो, जब वो राधा रानी के साथ है, हाँ तो प्रेमी भक्तों ललिता विशाखा किसी के बारे में कोई भान नहीं है, वो कटाक्ष ने उनका पूरा घेर लिया है, वो घेरे रहता है हर समय, तो कैसे जीव का कोई दुख स्पर्श करेगा, वो भी मिथ्या दुख, दुख तो है ही नहीं, आत्मा को तो कुछ छूता नहीं, दुख भी नहीं है, वास्तविकता तो ये है। हाँ तो वो अपने ये बाबा क्या कह रहे हैं, जीव का दुख ने स्पर्श नहीं कर सकता, वो अपने आनंद में विभोर है, विभोर। हाँ तो उनमें जो परिपूर्ण करुणा शक्ति है, करुणा शक्ति तो उनमें है, परंतु होने पर भी जो बद्ध जीव है संसारी जीव, वो कल्याण उनका हो नहीं सकता, करुणा सिंधु तो वो है पर क्या करें, वो आनंद में विभोर हैं, तो इसलिए किसी का कल्याण करने में सक्षम नहीं है वो। क्या बोल रहे हैं बाबा जी, जीवों के प्रति उस करुणा का प्रत्यक्ष प्रकाश सर्वथा असंभव है। प्रकाश करुणा का नहीं कर सकते भगवान कृष्ण, क्योंकि अन्य का दुख चित्त को स्पर्श करता है तो ही करुणा आती है, पर अन्य का दुख स्पर्श करे कैसे, स्पर्श कर नहीं सकता। फिर पतित उद्धार होगा कैसे, प्रश्न ये उठता है, यही प्रश्न उठा रहे हैं बाबा, उत्तर भी दे रहे हैं कि विश्व में परम करुणामय साधुगण हैं, महात्मा जन हैं, संत जन हैं, हालांकि उनको भी दुख नहीं छूता, परंतु जैसे निद्रा में व्यक्ति सोया हो उसको सपने में देखे कि हाँ ऐसा कोई दुख था, तो फिर उठने को थोड़ा याद रहता है कि हाँ ऐसा कोई दुख भी होता है, जबकि दुख है नहीं उनको, क्योंकि उनका एक भान होता है कि हाँ जीवों को भी ऐसे दुख दर्द कुछ होता है, भगवान तो आनंद में विभोर है। तो इसी वजह से भगवान जो है, भगवान की जो करुणा है हृदय के अंदर सिंधु जो है, वह महत् पुरुषों को हृदय जो है उसको वाहन बना लेते हैं और जीवों पे कृपा करते हैं। ये बताया है 13वें श्लोक में, और साध्य साधन तत्व में भी यही बताया है, ये है पेज 59। इसमें बता रहे हैं माया में दुख कभी भी हरि को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए भगवान की जो कृपा महत् पुरुषों के हृदय में विराज करती है, वो कृपा को वाहन बनाकर जीव के अंदर भगवान कृपा अपनी संक्रमित करते हैं, वो महत् पुरुषों के अंदर बैठ के कृपा करते हैं। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहें मोर वैष्णव प्राण। भगवान महापुरुषों के हृदय में बैठ के सामान्य जीव पर कृपा करते हैं। ये तीसरा इसका व्याख्या हम समझेंगे प्रार्थना के अंदर, पेज नंबर 77 के अंदर बता रहे हैं, भगवान के चरणों में हम उन्मुख होए जीव शरणागत हो, इसके लिए भगवान की करुणा चाहिए, बिना उनकी करुणा के हो नहीं सकता। तो बाबा क्या टीका दे रहे हैं इसमें, ये करुणा भगवान ने अपने हाथ में ना रखकर संतों को सौंप दी है, अपने हाथ में रखी ही नहीं है, उनका डिपार्टमेंट नहीं है ये करुणा करना और ये सृष्टि करना और ये सब करना, इसलिए भक्तों में वास करने वाली करुणा अन्य भक्तों के अंदर जाती है, वाहन बनती है, ये साइंस है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में भगवान की करुणा अगर एक बारी संत बोल दें कृष्ण ही इज अ नाइस डिवोटी एक्सेप्ट हिम, भगवान कहेंगे हाँ ही इज अ नाइस डिवोटी, वो ये नहीं बोलेंगे एक बारी बोल दिया कि ये अच्छा भक्त, चाहे वो कैसा भी है, एक बारी बोल दिया तो मतलब ओब्लाइज हो जाते हैं ना, मतलब क्या करें, बोल दिया एक बारी। भगवान की करुणा छाया की तरह चलती है संत के मुख के पीछे, छाया की तरह, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे हमें कोई चीज चाहिए वो छाया है, भगवान की कृपा यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जो भगवान की करुणा कृपा है, अगर वो किसी को चाहिए तो वो सोचे वो छाया को पकड़ेगा तो कभी मिलेगी स्वतंत्र, जो मूल ही नहीं है, मूल यानी गुरुदेव, गुरुदेव के माध्यम से भक्त शिष्यों पर कृपा करते हैं भगवान, तो जब गुरुदेव है उनकी छाया चल रही है, छाया मतलब उनकी कृपा, जो अगर गुरुदेव प्रसन्न है तो भगवान कृपा कर रहे हैं, पर वास्तव में बिना मूल के छाया नहीं है और मूल वह स्वयं खो दें तो छाया व मूल वह स्वयं खो दें, आप समझ पा रहे हैं, जो छाया है वो मूल की है, मूल माने भगवत भक्ति रसमय विग्रह गुरुदेव की छाया है, परंतु वो मूल तो स्वयं खो दें। इसलिए जो गुरु तत्व है वो एक अपूर्व समन्वय है, भगवत तत्व भक्त तत्व का अपूर्व समन्वय जो है ये गुरु तत्व है, इसलिए कहा गया है कि गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। कृष्ण तत्व को समझना फिर आसान है, परंतु गुरु तत्व को समझना ये शरणागत जीव ही समझ सकते हैं। आप इस बात को समझे, अभी आप सबने गाया साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस तथा भाव्यतेव सद्वि, कि साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि है शिष्य के लिए गुरु, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि साक्षात हरि है समस्त, उक्तस तथा भावयत एव सत्य, जो साधु जन है वो भी यही बोल रहे हैं कि गुरुदेव जो है वो साक्षात हरि हैं, चाहे शास्त्र बोल रहे हैं साधु जन बोल रहे हैं। उक्त सदा भावयत एव सद भी, किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, समस्त शास्त्र समस्त गुरुजन समस्त परंपराओं में ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है। ये जो ज्ञान है कि आचार्य मेरा स्वरूप है, ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलि में सब शिष्यों के सब गुरु के लिए लागू होता है। ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है, इसे कहते हैं गुरु तत्व। वो जो कभी खंडित नहीं हो सकता, जो वो बदलाव नहीं किया जा सकता उसमें। हम खंडित जरूर हो सकते हैं, पर ये ज्ञान खंडित नहीं हो सकता। ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है, चारों युगों में, हर संप्रदाय में, और हर संप्रदाय में मोह से अधिक संत कर लेखा। हाँ, कम से कम भगवान को भगवान के बराबर ये तो बताया गया, आचार्य मेरा स्वरूप मानो, मत भक्त्या पूज्य अभ्य अधिक, मेरी पूजा मेरे मुझसे, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी अधिक करो, ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। तो जिनको हमें प्रसन्न करना है वो बता रहे हैं क्या करो, जिनको प्रसन्न करे उनकी इच्छा अनुसार तो उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो बता रहे हैं किस प्रकार से मुझे प्रसन्न करना है। तो जैसे बताया साक्षात हरित्वे न, साक्षात हरि है, पर ये सब लोग नहीं समझते जो भक्ति में उन्नत है। भाव्यत एव सद भी, ये जो तीन शब्द है भाव्यत एव सद भी, ये भावना सब ये कनिष्ठ भक्तों के नहीं हो पाती, जिनमें सीमित सुकृति है, सीमित भक्ति है, उनको ये बात नहीं समझ आती। एक बहुत बड़े संत हैं, उनके श्रीमुख से हमने खुद सुना, वो बता रहे थे कि हम हरि के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हजारों लाखों शिष्य हैं संसार में, तो कह रहे थे हमारा तो अनुभव ये है कि हम जिनको ढूंढ रहे थे इतने वर्षों में ये समझ आया जिनको ढूंढ रहे तो हमें पहले ही मिल चुकी, अब उनमें जितनी भावना करेंगे तो फिर वो मिल जाएंगे। कि हाँ, बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना गुरु के चरणों की सेवा किए, बिना गुरु में भगवत भाव किए, ना कभी किसी को भगवान मिले हैं ना मिलेंगे। ये ऐसा विज्ञान है कि हर संप्रदाय में, ऐसा नहीं कि किसी एक संप्रदाय में हो, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय हो, कोई भी निम्बार को राधावली, कोई भी संप्रदाय हो, सब में ये ज्ञान जो है प्रथमो सेवो गुरु के चरण, सबसे सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों की वंदना करो। गुरु गोविंद ना भेद कराई, गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं करो। तो ये ज्ञान जो है हर संप्रदाय में है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है इसके अनुसार आपको बताते हैं, इसमें भी श्री कृष्ण बता रहे हैं बहुत जगह, अपने पिता को भी बता रहे हैं नंद बाबा को। जो अपने गुरु और इष्ट देव में भेद बुद्धि करता है कि नहीं ये तो भक्त है या ये भगवान है ये भक्त है, ऐसा कुछ भी भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वाणी है पेज 192 में। और जो गुरुदेव और भगवान के विग्रह को देखकर तुरंत ही वेद पूर्वक प्रणाम नहीं करता, उसको गौहत्या का पाप अवश्य लगता है। दर्शन करते ही तुरंत वेग पूर्वक प्रणाम ना करने पे गौहत्या का पाप लगता है, ये ग्रंथ में बताया जा रहा है। और ये बड़ा सुंदर संवाद है, नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्ता हो रही है। तो श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये है कृष्ण जन्म खंड ब्रह्म वैवर्त पुराण। कृष्ण सिखा रहे हैं प्रातः काल उठ के ब्रह्म रंध्र में अपने गुरुदेव का ध्यान करा कर। नंद बाबा को सिखा रहे हैं श्री कृष्ण स्वयं कि प्रातः काल उठ के गुरुदेव का ब्रह्म रंध्र में ध्यान करो, अपने पिता को, जगत पिता अपने पिता को सिखा रहे हैं। हाँ, ये कृष्ण जन्म खंड से कुछ बताने लगे थे और सोचे प्रकृति खंड से आपको पहले बता दें। पिता की अपेक्षा मां का जो स्थान है वह 100 गुना ऊंचा होता है, पिता की अपेक्षा, पिता से ऊंचा स्थान मां का है 100 गुना, ये भगवान ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहा है। परंतु जो ज्ञानदाता गुरु हैं वह माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होती है। ये हमें बताया आपको प्रकृति खंड से। अब आते हैं कृष्ण जन्म खंड की ओर। माता से 100 गुना स्थान जो होता है भगवान का होता है, अभिष्ट देव का, और अभिष्ट देव से 4 गुना स्थान जो होता है वो मंत्र शिक्षा इत्यादि प्रदान करने वाले गुरुदेव का। ईष्ट देव से 4 गुना ज्यादा स्थान भगवान खुद नंद बाबा को सिखा रहे हैं। ईष्ट देव से ऊंचा स्थान गुरुदेव का होता है। और कितना सुंदर बता रहे हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ की जल में, पेड़ के जड़ में जल डालो तो सारी टहनियां हरी भरी हो जाती हैं, तो इसे देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जिसके संतुष्ट होने पर, ये भगवान ज्ञान अपने पिताजी को दे रहे हैं सब, जिसके संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं, वह हरि भी गुरु के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके प्रसन्न होने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं, वो कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में दूसरे प्रकार से लिखा। भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि इतनी दुर्लभ है हरि भक्ति, ये कैसे की जाए, कृपया इसका ज्ञान दें। तो भगवान बता रहे हैं, ये जो तीर्थों में जाते हो, ये जल का स्थान देखते हो, गंगा जी या इत्यादि कोई भी तीर्थ इत्यादि में जाते हो, तो भगवान इस प्रकार बता रहे हैं कि केवल जल में तीर्थ तीर्थ नहीं है, और ये मिट्टी मिट्टी पत्थर की जो मूर्ति होती है, ये कोई सिर्फ यही तीर्थ नहीं है, पावन करने की वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति मुख्य तीर्थ और देवता है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ हैं। गंगार परश कैले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। गुरु की शक्ति, गुरु की महिमा असीम है, अपरंपार है। जो गुरु को हरि स्वरूप में देखते हैं उसको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आपको कथा बताते हैं। एक बार एक शिष्य थे, वह उनके गुरुदेव ने उनको बोला कि तुम ना सबकी सेवा ऐसे किया करो, संतों की सेवा, सबको संतों को ऐसा देखा करो जैसे मैं ही हूं, मेरे समान देखा करो। उन्होंने कहा देखो गुरुदेव, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपके समान तो आप ही हो, आपके समान तो कोई नहीं। ये भावना भी ठीक है, और गुरु भी हैं, गुरु चाहते हैं सबकी सेवा करूं, तो ऐसा तो मैं नहीं देख सकता। ऐसे अनेक उदाहरण है, लालाचार्य का भी उदाहरण, उनको भी है, उनके गुरुदेव ने बोला कि संतों को भी ना मेरे समान देखो। उन्होंने कहा देखो गुरुदेव, ऐसा तो नहीं कर सकता, पर सेवा सभी करूं। चलो ऐसा करो, अगर गुरु भाई के रूप में देख लेना सब संतों, ठीक है, ये अक्षरता पालन कर, ये बिल्कुल पालन करो, ठीक है। फिर गुरु को भगवान रूप में पूछ, जो कहा वो पूछते थे। एक दिन वो भिक्षा करने जा रहे थे मधुकरी, तो चले गए, तो गुरुदेव बोलने लगे कि मैं तुमने कुछ कहना चाहता हूं, पर तुम कहीं जा रहे हो तो ठीक है, हो आओ, वापिस आओगे तो बोल लूंगा, ठीक है। वो चले गए अपनी भिक्षा करने, वापिस आए तो देखते हैं गुरुदेव पधार गए। काफी घंटे हो गए, शरीर ऐसे बांध के रखते हैं ना जब, तो पूछा क्या हुआ, इतनी भीड़ लगी है, तो गुरुदेव पधार गए। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुदेव कैसे पधार सकते हैं, उन्होंने बोला था मुझे तुम वापस आओगे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा। गुरुदेव ऐसे नहीं पधार सकते। वो गुरुदेव के पास गया जहां बांध के रखा हुआ, गुरुदेव को छुआ, ये कहा कि यदि मैंने तन मन प्राण से आपको अपना भगवान माना है तो कृपया मुझे कहो जो आप मुझसे कहना चाहो। तो गुरुदेव उनके जो कि मृत थे वो जीवित हो गए और ये बोला कि बेटा मैं तुमसे यही कहना चाहता था कि संतों की सेवा ना, संतों को मेरे समान ही मान के उनकी सेवा किया करो। अच्छा ठीक है गुरुदेव, मैं कोशिश करूंगा, परंतु आप एक साल रह के देखो कि मैं ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। तो मृत गुरुदेव जो थे सबके लिए मृत थे, वो गुरुदेव एक वर्ष पुनः जीवित रहे और अपनी फिर सेवा देख के फिर प्रस्थान किए। तो बोली गुरुदेव हैं, एक को बिल्कुल अलग रूप में दिखते हैं और अनेकों को बिल्कुल अलग रूप में दिखते हैं। हमें गुरु मिल गए इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें गुरु भक्ति आ गई इससे हमारा कल्याण होगा। हमारे गुरुगत प्राण होंगे तो गुरु के जो प्राण है युगल किशोर श्यामा श्याम, वो उनके प्राण हमारे प्राणों में संचरित हो जाएंगे। यदि गुरुदेव प्रसन्न हुए तो गुरुगत प्राण जिनके होंगे उनसे तो गुरु प्रसन्न होंगे, और कैसे होंगे, जिनके जीवन में और कुछ नहीं होंगे गुरु के अलावा। गुरु महिमा अपार है, गुरु शक्तियां सीमित है, सब जगह सब स्थान पर गुरु हैं शिष्य के लिए। अब जैसे हमारा कोई शिष्य मान लो अर्जेंटीना में हो, योगपीठ कर रहा हो, तो उसके साथ हम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कोई केरला में हो उसके साथ भी होंगे। कोई मान लो पधार गया हो यहां से, हमारे से पहले तुम्हारे कई शिष्य जाएंगे, तो गुरु साक्षात यहाँ पे भी हैं और गुरु मंजरी रूप से उनकी नवद्वीप में भी उनको मार्गदर्शन देकर उनको सेवा में लगा रहे हैं, नवद्वीप में गुरुदेव रूप से देकर सेवा में लगा रहे हैं। तो यहाँ भी हैं। अब मान लो कोई अमेरिका रहता है, वो भोग लगा रहा है गुरुवर्गे भ्यो नमः गुरुदेवाय नमः, तो वहां पे भोग स्वीकार कर रहे हैं, प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। तो गुरु तो हर स्थान पे है ही, अखंड मंगल अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचर तत्पतम दर्शन दसमय श्री। जीव एक देशी है, गुरु एक देशीय नहीं है। जीव यहाँ पे है तो वहां नहीं है, गुरु ऐसे नहीं है। गुरु भगवत तत्व और भक्त तत्व का समन्वय है, हमारे समझ के परे है चीज। भाई इतना समझ जाए कम से कम भगवान के समान पूजनीय है, बहुत थोड़े मतलब मोह से अधिक संत करी लेखा। भगवान तो यही बोल रहे हैं मेरे से ज्यादा पूजो संत को। गुरु क्या बोल रहे हैं, 64 माला करो कम से कम, ब्रश करने से पहले फिर 2 घंटे तुम कम से कम अध्ययन किया करो, संतों की सेवा किया करो। तो गुरु भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान गुरु की सेवा में लगाते हैं, दोनों को इससे आनंद मिलता है। यहाँ पे भी हैं गुरु दिखते हुए और वहां पे भी हैं। जो शिष्य जाके नित्य सेवा में जाएंगे, गुरु यहां होते हुए भी वहां पे हैं। गुरु एक देशीय नहीं होते और गुरु के चरणों में यदि अपराध हो जाता है तो तो विनाश हो जाता है, बिल्कुल विनाश, कुछ नहीं बचता, जड़ से खत्म। भगवान सह नहीं सकते ना, लाडली का लाडला है, सहोगे कि सहेंगे कैसे? लाडली के लाडले के प्रति यदि कोई गलत बात, गलत कुछ अनादर कर दिया, लाडली सहेंगी? ऐसा नहीं है। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, यस्से साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदय गुरु मर्त्या सदधि श्रुत तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सभी भक्तों के लिए। भागवत में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह है 7, 15, 26, पढ़ सकते हैं। यस्से साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदय गुरु, जो ज्ञान देते हैं गुरु, वो साक्षात भगवान है, भगवान के अंश नहीं है, अंश नहीं है, कोई मानव नहीं है, कोई भक्त संत नहीं है सामान्य, वो अन्य भक्त की तरह नहीं है, वो साक्षात भगवान है। मर्त्य स्याद धीह, जिसमें जिस व्यक्ति ने उसमें ये मान लिया कि ये मानव है, हमारी तरह ही है, अगर ऐसा मान लिया, इस प्रकार की धारणा कर ली, कंसेप्शन कर लिया कि तो हमारे जैसे है, तो उसने जो भी भगवत कार्य किए हैं, भगवत भक्ति करी है, करी थी, कर रहा है या करेगा, सब व्यर्थम इति। ये क्या है, ये श्लोक का अर्थ है असत धी, ये असत बुद्धि है, धी माने बुद्धि, धी ह असद, असद मतलब गलत, रॉन्ग, फॉल्स, ऐसा जो मानते हैं कि मानव मनुष्य इत्यादि हैं, असत धी ह सर्व कुंजर शोचवत, ये बिल्कुल वैसे ही भक्ति होती है जैसे हाथी है। ये कुंजर शोचवत का मतलब है हाथी है, वो एक तालाब में स्नान करने जाता है, स्नान करता आता है और मिट्टी अपने ऊपर डालता है, उससे भी ज्यादा गंदा हो जाता है जैसे पहले गंदा था। तो यदि हम किसी संत के, गुरुदेव के प्रति यदि हम मानव बुद्धि रखते हैं तो कभी भी परब्रह्म की बुद्धि नहीं है, जैसे ये बुद्धि नहीं है तो असद धी है, और उसका सारे क्रियाकलाप जो होते हैं वो भगवान को रुष्ट करने वाले होते हैं। जिनको प्रसन्न करे वो तो बता रहे हैं मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, और तुम अपना कुछ फिर कुछ कर रहे हो। हमने बताया आपने भगवान को नीला भी कैसे माना, भाई शास्त्र नहीं तो आप तो लाल मान लो, हरा मान लो, नहीं वो बात मानी, अच्छा बांसुरी बजाते ये कैसे माना, ये मान लो कि वो कुछ और करते होंगे, तबला बजाते होंगे, नहीं बांसुरी का ही माना, क्यों? शास्त्र को, शास्त्र मतलब वो खुद शास्त्र, उनकी श्वास ही तो है, उनकी तो वाणी है, और क्या है। तो वो बता रहे हैं कि मेरे को कैसे भजो, कितना सुंदर श्लोक में बता रहा जा रहा है आपको बताएं। सिद्धिर भवती वा नेति संशय अच्युत सेविनाम, कि जो अच्युत की सेवा करते हैं भगवान की, उनकी सिद्धि होगी या नहीं होगी इसमें तो संशय है, भगवान की जो भक्ति करते हैं उनकी सिद्धि होगी कि नहीं होगी इसमें बहुत बड़ा डाउट है, ना संशयोत्र, इसमें संशय नहीं है। तद भक्त परिचर्यात आत्मनम, जो उनके भक्तों की सेवा करता है उनकी सिद्धि में कोई संशय नहीं है, ये भगवान की खुद की वाणी है। जो भगवान के भक्तों की सेवा में गुरुगत प्राण है उसकी सिद्धि होगी, इसमें संशय। हमने गुरु को उंगली पकड़ा दी, बोल रहे सिर्फ एक काम, कुछ भी नहीं करना, बदले यूं कर दे रहे, बताओ कोई कोई मुश्किल है सिद्धि में, कोई समस्या, सारा भार उनके हाथ में है, जैसे बोलो जेल का वार्डन या पृथ्वी का, जिसको चाहे कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीपे पार तोमार शक्ति आछ, कृष्ण तो आपकी निजी संपत्ति है, जिसको चाहो उठा के दे दो, अनक्वालिफाइड को, योग्य भी नहीं है, पर एक ही योग्यता, गुरु का पूर्ण आश्रय, पूर्ण भगवत भाव, पूर्ण समर्पण गुरु का। अब सोचो ये बताया कि माँ, पिता से ऊंचा स्थान माँ का, माँ से ऊंचा स्थान ईष्टदेव का, ईष्टदेव से ऊंचा स्थान गुरुदेव का, सबका स्थान जो है गुरुदेव ले सकते हैं, गुरुदेव का स्थान कोई नहीं ले सकता। आप देखोगे जो शिष्य होते हैं उनको जब भी शांति मिलती है गुरु चरणों में बैठ के ही मिलती है, नहीं तो जितना मर्जी घूम लो, जिस मर्जी संत के चरण में बैठ जाओ, जिससे मर्जी कथा सुन लो, जलते रहोगे, क्यों? हरि तुमसे रुष्ट हैं गुरु स्वरूप में, तो तुम कैसे तुष्ट हो सकते हो? फिर गुरु चरणों में बैठोगे, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। ये गुरु के जो चरण का मना है, ये भक्ति का घर है, घर आ गया हमें। घर आने का मतलब है गुरु के चरण। आप देख लो किसी भी भक्त को जितना मर्जी धक्के खा ले, जो मर्जी भोजो, भी गुरु के चरणों में आता है शांति उसे केवल तभी मिल पाती है, अन्यथा नहीं मिलती। अब जैसे हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, कोई बाबा का शिष्य हो, कोई हमारा शिष्य हो, कोई किसी का भी शिष्य हो, हमारी दृष्टि में ना कोई भेद था ना कभी होगा। अब जैसे ये हैं, ये किन्हीं और के शिष्य हैं, पर आप हमेशा बच्चे ये बात याद रखना, हमारे यहाँ तो वैसे चींटी की भी कभी निंदा नहीं हो सकती। यदि आप गुरुदेव की कभी भी अनादर कभी भी हो, कुछ भी किसी प्रकार का, एक क्षण यहां मत रुकना, क्योंकि जो प्राप्त होगा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, इस बात को हमेशा याद रखना। जो प्राप्त होगा, यहां एक सेकंड मत रुकना कभी गुरु का अनादर हुआ, एक सेकंड भी, नहीं तो आपकी भगवत भक्ति, गुरु, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनादर, जहां गुरु का अनादर हो, अगर हम उस स्थान पर रुकते हैं तो सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ नाश, कुछ बचता नहीं है उस व्यक्ति। सदगुरु अपराध अति भयंकर, यही अपराध नष्ट होए देव नर। सदगुरु अपराध अति भयंकर, इतना भयंकर है, यही अपराध नष्ट होए देव नर, देवता नहीं बच सकते, देवता का विनाश हो जाता है। यही अपराध नष्ट होए देव नर, देव और नर का भी नाश हो जाता है। बाबा महाराज इस विषय में क्या कह रहे हैं, हमने एक और भक्त को बोला था, वो हमारे से जुड़े थे, तो हमने उन्हें पहली बार में बोला, देखो आप किससे मर्जी दीक्षा कोई भी परिवार में लो, वो 20-30 साल से थे, तो हमने उन्हें बोला देखो आप जहां मर्जी दीक्षा नरोत्तम परिवार, हमने सारे बताया, उनको पता नहीं था, हमने बताया देखो अद्वैत परिवार होता है, नरोत्तम परिवार, श्यामानंद परिवार और अनेकों परिवार, गदाधर परिवार, जहां मर्जी दीक्षा लो, पर जगह में दीक्षा लीजिए उसके बाद श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सर। तो उसी प्रकार हम आपको कह रहे हैं, उसी प्रकार हम सब, हमारे लिए सब हैं। कभी भी उस स्थान पे मत जाओ जहां, जैसे बाबा बता रहे हैं, ये पढ़ सकते हैं आप साधे साधन तक पेज 39, यदि कोई व्यक्ति गुरुदेव की निंदा करे या उनकी महिमा का अवकाश लोअर करे, लघु करे, तो वहां ना नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं गलती से गुरु निंदा सुन पर कान में हाथ देकर हरिस्मरण करते हुए वो स्थान त्याग देना चाहिए। गुरु निंदक का संग, उनके साथ रहना, यहां तक कि उनका मुख शकल देखना भी उनका वर्जित है। और ये 225 नंबर पेज है, ये आप पढ़ सकते हैं, उसमें बाबा ने एक श्लोक कोट किया है, निंदाम भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सोऽपि यात्यदः सुकृतः अच्युतः। जो भगवान की निंदा इत्यादि सुन के वो स्थान का त्याग नहीं करता, तो उसकी समस्त सुकृति जो उसने आज तक जन्मों में इकट्ठी करी, उसे सबसे विच्युत हो जाता है, उसका अधा पतन हो जाता है। क्या करके, सिर्फ वो स्थान जहां पे गुरु निंदा हुई है, उस स्थान को अगर नहीं त्याग करता, तो बाबा श्लोक शास्त्रों से बता रहे हैं कि उसकी सारी समस्त सुकृति से वह विच्युत हो जाता है, उसका अधा पतन हो जाता है। क्या करना है, सिर्फ जो स्थान को नहीं त्याग नहीं, इसलिए हमने आपको कहा, चाहे हमारे यहां हो या कहीं पे भी हो, यदि आप गुरुदेव का अनादर हो तो स्थान में एक क्षण मत रुकना। हाँ, और जैसे ये नहीं कि आपके गुरुदेव कोई हैं, उनके लिए, उनके संबंध में कह रहे हैं, किसी के भी सर्वत्र एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे हमारे बाबा महाराज हैं, तो बाबा महाराज की निंदा करने वाले राधाकुंड में भी हैं, बरसाना में भी हैं, वृंदावन में भी हैं, जगन्नाथपुर में भी है, मायापुर में भी है, होलसेल में है बाबा की निंदा करने वाले। आपके गुरुदेव की निंदा करने वाले सब जगह भी हैं, तो ऐसा कोई संत नहीं है जिनकी सर्वत्र निंदा ना होती, हर एक के। तो इसलिए कभी भी उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां गुरु को लघु या गुरु का अनादर हो रहा हो। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, रामचरित मानस में प्रारंभ में ही बताया जा रहा है, वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप में हरि है वो, रामचरित मानस अनादि है। ये जो है ये सब श्लोक अनादि हैं, अनंत काल के लिए, अनंत काल से हैं, अनंत काल के लिए, हर युगों के लिए। तो मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो नर रूप में हरि जो मेरे सामने प्रकट हुए हैं, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। भगवान जो हैं, जो श्री कृष्ण है, वो सेव्य भगवान है, और जो गुरुदेव है वो सेवक भगवान है, जैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और एक सर्विटर पर्सनैलिटी। गुरु क्या है? सर्विटर पर्सनैलिटी। किंतु प्रभो यह है भगवान के प्रिय पर है भगवान, इसलिए भगवत तत्व और भक्त तत्व का समन्वय है गुरुदेव। भगवान के जो भक्त हैं यानी प्रमुखता गुरुदेव, उनका अनादर जो है, आप सोचो क्या है, भगवान जब किसी जीव पे का कल्याण करने का ठान लेते हैं तो खुद बपू धारण करके, रूप धारण करके गुरुदेव के रूप में उसके सामने आ जाते हैं। तो गुरुदेव का यदि स्वयं भक्त अनादर करे या कुछ, तो किसका अनादर है? भगवान की कृपा का अनादर है। अब भगवान की कृपा चल के आई और अनादर कर दिया तो उसका विनाश होने में कोई संदेह है? सोचो ना किसका अनादर है। गुरु तो कोई मानव नहीं है। भगवान की करुणा का अनादर, क्या करने के लिए? भगवान की करुणा पाने के लिए। माला तो कर रहे, क्या पाने के लिए? करुणा। अरे वही तो चल के आई है, जो चल के करुणा सिंधु रूप में करुणा आई है, उसके कणिका मिल जाएगी और तुम तर जाओगे। तो करुणा सिंधु का अनादर करके कणिका प्राप्त करना चाहते हो? लाडली की करुणा, लाडली के लाडले का अपमान करके अनादर करके पाना चाहते हो? इसलिए बताया गया सर्व कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान हो जाता है। इस प्रकार से जो भक्ति करते हैं, कबीर जी का भी कुछ वर्णन आता है, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाने से एक फल मिलता है, संत के मिलने से चार फल मिलते हैं, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीर जी का यह विचार है। और सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोए, कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ो ना कोए, गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु के मिलने के बाद यदि आंख भी इधर देख ले तो वो मूर्ख है, क्योंकि जो जिसको प्राप्त करे वो तुम्हारे सामने है। अब बस कृपा का आदर करेंगे सब प्राप्त हो जाएगा, वो कृपा बपू उनका आदर से सब प्राप्त हो जाएगा। कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सो होए, मतलब जो भगवत भक्ति है ये स्वयं के करने से नहीं होती। एक होती है, खास बात ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं भगवत भक्ति के लिए, खास बात ये है कि वो हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं। हम कुछ ऐसे भक्ति करें कि संत महापुरुष के हृदय में हमारा स्थान बन जाए, उनके संकल्प में हमारा स्थान बन जाए। कोई संकल्प कर ले, वो बैठे हो ऐसे मौज में अपना बैठे हो, एक बार हमारा चिंतन कर ले, बस हो गया। हमारी कोई भी कायिक चेष्टा, कायिक माने शारीरिक, कोई वाणी से कोई बोलना या कुछ व्यवहार, ऐसा कुछ भी ना हो जिसे कृपा रुक जाए। क्योंकि ये मार्ग अपनी चेष्टा का मार्ग नहीं है कि हमने किसी प्रकार से सोचा हम ऐसे करेंगे ऐसा होगा, ये अपनी चेष्टा का मार्ग नहीं है। हमें कई बार लगता है ये बाबा ग्रंथ शायद हमारे लिए ही है सिर्फ। ये देखिए, ये है श्लोक नंबर 43 की व्याख्या। रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं कि इस मार्ग में, राग मार्ग में कृष्ण भक्त और कृष्ण कृपा के अलावा कोई उपाय नहीं है कि भक्ति में आगे व्यक्ति प्रगति कर सके। कितना सुंदर इसमें बताया जा रहा है कि गुरु और वैष्णव की जिस जैसे कोई मनोमत सेवा करेगा, जैसे वो चाहते हैं वैसे मनोमत सेवा करेगा, उसके फलस्वरूप उस परिणाम में कृपा संचार होती है। देखिए साइंस बता रहे हैं, जब गुरु और वैष्णवों की सेवा करते हैं तो कृपा संचार होती है, अकेले ऐसा नहीं हो सकता। एकाकी आमार ना ही पाए बल, उपनिषदों में भी आता है ना ही बलहीन लभ्या, बलहीन को ये प्राप्त नहीं होते भगवान। नायम नायम प्रवचने न लभ्य, ये भगवान जो है प्रवचन इत्यादि ना बहुना शुपे न, ये बहुत सुनते सुन के प्राप्त नहीं होते। यमेश वृणते तेन लभ्यस, जिसको वो वरण करना चाहते हैं ये उन्हीं भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको वो स्वयं वरण करना चाहे। वो किनको वरण करते हैं भगवान? आश्रय ले या सही भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मर्या कारण। जो गुरुदेव के आश्रय में रहकर भजन करता है उसको कृष्ण कभी नहीं त्यागते, आर सब मरे अकारण। तो इसमें बता रहे जिस हिसाब मनोमय सेवा करेंगे, मतलब गुरु की प्रसन्नता वैष्णव की प्रसन्नता ही एकमात्र कारण है, जिस परिमाण में वो प्रसन्न होंगे तो कृपा संचारित होगी, उसके अनुरूप जो साधक के मन प्राण है वो राधा कृष्ण के प्रति प्रीति रस से भर जाएंगे। हम यही चाहते हैं राधा कृष्ण के प्रति प्रीति रस हो, यही चाहते हैं। कैसे होगा? जिस मात्रा में गुरु व वैष्णव प्रसन्न होंगे उसी मात्रा में प्रीति रस से सिक्त जीव का हृदय हो जाएगा। और यही अगर नौतम ठाकुर की भाषा लें तो की रूपे पाई बो सेवा मोहे दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना होई लो आमा। ये साधे साधन तत्व में एक स्थान पे बताते हैं बाबा कि ये शास्त्र में कहीं नहीं बोला गया कि श्री कृष्ण की सिर्फ अकेले भक्ति कर लो, कहीं नहीं बोला गया। हमेशा क्या बोला गया, जैसे नौतम ठाकुर बता रहे हैं कि रूपे पाई बो सेवा, किस रूप में मुझे पामर को सेवा मिलेगी? क्यों? मैं तो दुराचारी हूं, और उससे भी खराब बात, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हो लो अमर, मेरे गुरु चरणों में वैष्णवों के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो कैसे मुझे भगवान की सेवा नित्य सेवा नहीं कोई सेवा प्राप्त हो, प्राप्त नहीं होगी। और बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य में बताया गया, ये साइंस समझ लीजिए, जिस मात्रा में गुरु वैष्णव से प्रसन्न होते हैं उसी मात्रा में हमारे अंदर शक्ति आती है, बल आता है, जिससे हम निरंतर युगल किशोर का निरंतर सिमरन कर सकते हैं। देखो भक्ति वास्तव में क्या है, इस शरीर इस संसार का पूर्ण विस्मरण और श्यामा श्याम का पूर्ण स्मरण, इस शरीर इस संसार का पूर्ण विस्मरण, जैसे है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, और श्यामा श्याम का निरंतर स्मरण। ये कैसे होता है? जिस मात्रा में कृपा होती है, कृपा के बिना ये नहीं हो सकता, जिस मात्रा में गुरु वैष्णव की, जैसे आज हम सिर्फ बाबा के शब्द ही बोलना चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रारंभिक चीजें हैं, परंतु ये देखिए पेज नंबर 41, सेवा भगवती भगवान की कृपा दो प्रकार से होती है, गुरु व वैष्णवों के माध्यम से, और एक के बिना दूसरी सेवा अपूर्ण रह जाती है। कोई कहे कि मैं सिर्फ गुरु की सेवा करता हूं वैष्णव की, ये गलत है, अगर मैं सिर्फ वैष्णव ही करता हूं गुरु के नहीं, तो वो भी गलत। बाबा कितना सुंदर इसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि केवल गुरु सेवा के लिए आग्रह, और गुरुदेव क्या करते हैं अपने आशीष शिष्य को वैष्णव चरणों में समर्पण कर देते हैं और वैष्णव सेवा कर धन्य होने का उपदेश देते हैं। हमारे यहां क्या करते हैं, हर समय वैष्णव की सेवा करो करो करो, निंदा करो सेवा करो 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 करो, और वैष्णव क्या करते हैं, जो उनके साथ भक्त होते हैं अपने आशीष जन को गुरुपाद पद्मों की सेवा में लगाते हैं, तो वैष्णव क्या करते हैं गुरु की सेवा में लगाते हैं, गुरु क्या करते हैं वैष्णव की सेवा में लगाते हैं। अगर गुरु वैष्णव की सेवा में नहीं लगा रहा तो अपना गुरु का कार्य पूरा नहीं कर रहा, और यदि वैष्णव है वो गुरु की सेवा में नहीं लगा रहे तो वो कुसंग है, वो वैष्णव संघ नहीं है, वो कुसंग है, क्योंकि श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती समय जो तुम्हारे मूल से तुमको हटा रहे हैं तो वो वैष्णव कैसे हो सकते हैं। इसी संबंध में बाबा महाराज ने और भी सुंदर व्याख्या किया हुआ है, ये देखिए ये एकदम बिल्कुल प्रारंभ में है, पेज नंबर 23 पे, जहाँ भक्तों का संग मिला है, जैसे बताया कि भक्तों के जो संग होता है वो गुरु की सेवा में लगाते हैं, गुरु की सेवा में लगाते हैं वैष्णवों की, जहां पे भक्तों का संग मिला परंतु गुरुपाद आश्रय की कर्तव्यता नहीं है कि हाँ ये कोई जरूरत है गुरु के चरणों में अर्चन करना वंदन करना, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो वो भक्त संग हुआ ही नहीं है। बाबा कहते हैं वो हमारी खुद की बदकिस्मती है, दुष्कृति है कि अभी तक हमारे को सत्संग नहीं मिला, क्योंकि सत्संग का मतलब ही यही है कि भक्त अगर मिले तो वो गुरु की सेवा में लगाएंगे और गुरु मिले तो वो भक्त की सेवा में। अब जैसे हमारा तो यही मानना है कि ये बहुत ही गंभीर है विषय भक्ति का, इसमें अगर निरपराध होके एक कदम चलो तो बहुत अनुभव होती है, और अपराध के साथ हजारों कदम चलो तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो यदि हमको समझ आ जाए किसी भक्त को कि श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति शर्मा, तो इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं, उसका आना जाना बंद, उसको अपना डेस्टिनेशन घर मिल गया। देखिए अगर किसी संत के पास जाएंगे, हम आपको उदाहरण देते हैं, हम कई संतों को जानते हैं, वो ये शिक्षा देते हैं कि सिर्फ गुरु से मतलब रखो, गुरु की सेवा करो, और वैष्णव लोग दिखे भी सही ना तो आंख नीचे करके साइड से चले, मतलब वो हरे कृष्णा बोले या प्रणाम करें तो हाँ ठीक, ये भी शिक्षा है। और ऐसे भी कई होते हैं कि ना गुरु जी की ना वैष्णवों की, हम डायरेक्ट, हमारा डायरेक्ट है, ऐसे भी होते हैं। और कई होते हैं जैसे हमारे ऐसे अल्प बुद्धि के जो भगवान गुरु और वैष्णव सबकी सेवा करते हैं, और ग्रंथों का अध्ययन और सब कुछ करना, तो ये है पूर्ण रूप से भागवतिक कार्य सेवा। तो कहीं पे भी जाएंगे तो अगर वो ये बात बोलेंगे कि हाँ जी गुरुजी की सेवा करो, वैष्णवों की मत करो या किसी की भी मत करो, तो हम क्या करेंगे, गलत बोल रहे हैं, यही बोलेंगे हम लोग। हम ऐसे कई शिष्यों को जानते हैं जो इस प्रकार से हैं, पर हम उन्हें कभी करेक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि यदि हमने उन्हें करेक्ट किया चाहे सही बात में भी है तो क्या होगा, क्योंकि उनकी गुरु से श्रद्धा चली है, वो हम नहीं चाहते। आपकी आपकी कुछ भी हो जाए, गुरु में भगवत बुद्धि होनी चाहिए, वो कुछ भी उन्होंने बोला है, हम उन्हें करेक्ट नहीं करते। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर आप किसी का भी संग करते हैं तो या तो उनके प्रति अपराध होगा, गलत बोल रहे हैं, या गुरु के प्रति अपराध होगा, ये गलत बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ से सर्वनाश सुनिश्चित है। आचार्य तो दूसरे व्यक्ति भी हैं, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है, हमारे को जो किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है किसी भी तत्व के बारे में, सर्वोत्कृष्ट सब कुछ है हमारा, तो ये राय भी बोलना नहीं है, हमारी धारणा ऐसी है कि एक साल में व्यक्ति बैठ जाए तो उसे सब कुछ प्राप्ति होना क्या हो चुकी है। इंजन से केवल डब्बा जुड़ा रहे तो कहां पहुंचेगा, जहां इंजन ने पहुंचना है, और इंजन ने कहां पहुंचना है वो तो हम सबको पता ही होता है, गंतव्य पर पहुंचना है। तो कभी अपराध ना हो किसी वैष्णव के चरणों में, परंतु सर्वत्र विभिन्न प्रकार की धारणाएं इत्यादि होती हैं, तो शेषकर तो यही है कि संग करना बड़ा ही खतरनाक सा ही रहता है। और बहुत महत्वपूर्ण विषय में आते हैं, देखिए हरि से बड़ा हरि का नाम, इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरि के नाम के अलावा कोई गति नहीं। तो आज हम इस विषय में आज क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि जैसे भगवान है उनकी भक्ति है तो भगवान का नाम भी है, नाम कैसे जपना है वो विधि भी भगवान ने बताई हुई है। तो जब नाम अपराध के हट के नाम जपेंगे तो एक बारी नाम लोगे साक्षात दर्शन होंगे नाम अपराध के बिना। तो ये नाम अपराध किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझें। सबसे पहला नाम अपराध है सताम निंदाम, जिस जिनके द्वारा ये भगवत भक्ति का नाम का प्रचार इस दुनिया में हो रहा है, ऐसे संत जनों की यदि कोई निंदा करता है तो ये पहला नाम अपराध है, सबसे बड़ा नाम अपराध ये बताया जाता है। तो उससे नाम भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं, नाम को नाम भगवान बोला जाता है, नाम भगवान उससे अप्रसन्न हो जाते हैं, और अपराधी के प्रति अपनी निजी शक्ति जो है वो प्रकाश नहीं करते। या बाबा की पुस्तक है माधुर्य कदंबनी, पेज नंबर 160 खोलिएगा जब आप पढ़ना चाहें, बाबा की टीका है नाम जो है अपराधी व्यक्तियों के प्रति अप्रसन्न हो जाता है और अपनी निजी शक्ति का प्रकाश नहीं करता। ये नाम ऐसे नहीं है कि बोल दिया, ये भगवान है, वो अप्रसन्न हो जाते हैं। यदि गुरु को मानव मान लिया तो नाम अप्रसन्न हो गए, गुरु की अवहेलना कर दी, नाम अप्रसन्न हो गए। अब जीरो से गुणा जितने अरबों वर्ष तक करते थे, नाम अपराध है। पहला नाम रोध पहला ही है, सताम निंदा। जब निंदा कोई करता है वो सबसे बड़ी अपना एक्सप्लेनेशन ये होती है, मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं तो सच बोल रहा। अच्छा, तो बाबा महाराज कहते हैं कि ये आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 300 है साधे साधन तत्व में, कि साधु महात्मा के दोष का कीर्तन करना ही निंदा है। कि उनमें कोई दोष है नहीं है, जो भी है वो दोष के बारे में बोल रहे हो, वो बोलना निंदा है। ये श्रीधर स्वामी भी बताते हैं, इसमें सत्य और झूठे का भी बस प्रश्न है कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ, तुम बोल रहे बोल क्यों रहे हो, तो वो भगवान ने इस कार्य के लिए भेजा। तो इसमें सत्य और मिथ्या कोई प्रश्न नहीं है, बाबा कह रहे हैं। मतलब तो दोष का कोई बोलना ये निंदा के अंदर आता है। पहला नाम अपराध, और जो अपराधी व्यक्ति के प्रति नाम कभी भी अपनी निज शक्ति का प्रकाश नहीं करता। जो नाम भगवान है ना, जो उनका नाम लेता है उनका पालन करते हैं, हमेशा सतत पालन करते हैं, नाम भगवान पालन करते हैं। यदि उनके प्रति कोई अपराध करता है, नाम अपराध कोई करता है, जैसे मान लो गुरु निंदा या सताम निंदा, तो वो बोलते हैं कि इससे नाम अपराधी के प्रति उनका संतोष जो है वो चला जाता है, फिर उसका पालन नहीं करते वो। ये बाबा की टीका है 165 नंबर पेज। तो पालन ही नहीं करते हैं, और यदि कोई अपराधी व्यक्ति अपनी गलती जान जाता है और जिनके प्रति अपराध किया है उनके प्रति पुनः पुनः सेवा करता है, उनकी पुनः पुनः से हृदय से रो रो के कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी भी आजीवन ये गलती कभी नहीं करूं, रो रो के यदि वह क्षमा याचना करता है, तो नाम जो है धीरे धीरे उस पर प्रसन्न होते हैं। बाबा कह रहे हैं नाम क्रमशः उसके प्रति प्रसन्न होता है। यदि वह त्रुटि जान के जिनके प्रति अपराध किया है उनसे निष्कपट रूप से उनकी पुनः पुनः सेवा करें। अपराधी व्यक्ति तो इतना कलुषित हो जाता है, बाबा कहते हैं उसका हृदय ऐसा पत्थर की तरह हो जाता है कि उसको कभी कोई समझ नहीं आता, और हरि नामो हरि कथाओ कुछ अंदर नहीं जाती। अपराध में विभोर हो जाता है व्यक्ति जब, उसको कुछ समझ कभी नहीं आता, इसलिए हृदय से वो माफी मांग नहीं सकता, तो नाम भगवान कभी प्रसन्न हो नहीं सकते। इसी में ही बाबा आगे ये नाम के बारे में ही बाबा ने ये माधुर्य कदंबनी में बताया हुआ है, भगवान के नाम के प्रति अपराध होने से सर्व प्रकार की सुकृति नाश हो जाती है। सर्व प्रकार की जो भी आज तक किया था वो सब नाश हो जाता है। ये है माधुर्य कदंबनी से, और यह है प्रेम भक्ति चंद्रिका से। जब नाम लेते हैं तो भगवान का जो नाम लेता है तो भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि होती है कि ये तो मेरा है, ये मेरा नाम है, ये तो मेरा है, ये मेरे द्वारा पालनीय है, रक्षणीय है, आत्मीय है मेरा। जो नाम लेता है ऐसी भगवान बुद्धि करते हैं, कोई भी नाम लेगा, चाहे चाइनीज ले, मंगोलिया से ले, ये मेरा अपना है। तो मेरा दास है, मेरे द्वारा रक्षणीय है, मेरा है, मेरा है, मेरी मेरी बुद्धि उत्पन्न होती है। तो जो मैं भगवान के नाम में जो पतित पावन गुण है, वो शक्ति है, वो ऐसे उसके प्रति आती है जो नाम लेता है। परंतु ये जो शक्ति है नाम, ये जो शक्ति है ये निरपराधी के प्रति ही प्रकाशित होती है। अपराधी के प्रति तो नाम की प्रसन्नता नहीं रहती, अपराधी के उसके नाम की प्रसन्नता ही नहीं है, नाम अप्रसन्न हो गए। सोचो नाम ने ताड़ना था, हरे नाम एव केवलम, अब जब हमने अपराध इत्यादि के नाम ही अप्रसन्न हो गए तो बाकी बचा क्या। ये है प्रार्थना में है, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई में, टीका में बाबा बता रहे हैं, किसी भी प्रकार का और कोई अपराध हो तो हरि का जो नाम है भगवान नाम उसे नाश कर देता है। परंतु अगर वैष्णवों के प्रति अपराध हो जाए तो वह उनके प्रसन्न होने पे ही उसका नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिनके द्वारा ख्याति नाम प्राप्त कर रहे हैं पूरे विश्व में, उन नाम उनकी निंदा या अपमान या अनादर कैसे सह सकते, अनादर कैसे सह सकते। ये तो हमें बताया भगवान का नाम और क्या संबंध है कि हमारे गुरु में भगवत बुद्धि अगर नहीं है तो गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करने से सब खत्म हो जाता है। ज्ञानम न अस्तिम गुरुम बिना, ये गुरु गीता में आता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्र व्यक्ति पढ़ता है पर क्या पढ़ने से शास्त्र समझ आ जाते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य है कथिता है अर्थात प्रकाशन्ते महात्मनः श्वेताश्वतर उपनिषद। यस्य देवे परा भक्तिर, जिसकी जैसी भक्ति कृष्ण में है वैसी ही यदि गुरु में हो तो प्रकाशन्ते महात्मनः, सारे शास्त्र उसको खुल जाते हैं। कब खुलते हैं? जैसी भक्ति भगवान में वैसी भक्ति कम से कम गुरु में हो तो शास्त्र खुल जाते। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है पढ़ के प्राप्त नहीं होता, और ग्रंथ पढ़ के तब प्रकाशित होता है जब गुरु में वैसी भक्ति हो जैसी भगवान में होती। आचार्यवान पुरुषो ही वेदा छांदोग्य उपनिषद, आचार्य कृपा से ही भगवत ज्ञान की स्फूर्ति होती है। तो भगवान का जो नाम है या भगवान के जो शास्त्र हैं वह बिना आचार्य उपासना के आचार्य प्रसन्नता के उसका लाभ नहीं हो सकता। जो भगवान का धाम है, नाम हो धाम हो या ग्रंथ हो, वह कृपा से ही खुलते हैं नेत्रों के समक्ष। जो धाम है, धाम कोई चिन्मय स्वरूप है, इंग्लिश में से बोला था गुरु इज द रिवीलर ऑफ द धाम, वो धाम को रिवील करते हैं शिष्यों के हृदय में। यदि गुरु प्रसन्न हो तो धाम जैसे उनके हृदय प्रकाशित है वैसे शिष्य हृदय में प्रकाशित होता है। ये होता हृदय से हृदय में ही है, और किसको होता है? श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। संग साधु संग गुरु संग के कृपा और प्रभाव से कृष्ण भजन में रुचि उत्पन्न होती है। उनके कृपा के प्रभाव भजन में रुचि चाहते हैं, उनकी कृपा के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका का पेज नंबर 25 है, इसमें तीन रूपे पाईबो सेवा मोई दुराचार, गुरु वैष्णव में जो व्रति होती है तो किस प्रकार होनी चाहिए? वैष्णवा विष्णुवत पूज्या, वैष्णवा नाम विष्णुवत पूज्या, जो वैष्णव होते हैं उनकी साक्षात विष्णु के समझ समझ के उनकी पूजा करनी चाहिए सभी वैष्णव। और आचार्य नाम विशेषतः, आचार्यों की पूजा और विशेष भाव से करते। जिस भक्त साधव में वैष्णव आदर गुण ना हो तो भगवान उसके साधन भजन से कभी प्रसन्न नहीं होते। जिसमें वैष्णव आदर गुण नहीं है, रिस्पेक्ट करना नहीं है, उसके साधन से कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। यदि वैष्णव गण किंचित मात्र भी अपमानित होते हैं तो भगवान शत शत प्रकार पूजित होने पर भी कभी प्रसन्न नहीं होते। यदि वैष्णव का कहीं पर अनादर अपमान हो और भगवान की शत शत पूजाएं हो रही हो तो बाबा कह रहे हैं शत शत प्रकार से पूजित होने पर भी कभी प्रसन्न नहीं होते। तो हमेशा ध्यान रखना है निरपराध भाव से नाम हो, निरपराध भाव से अध्ययन हो, तो ही ग्रंथ तो ही नाम अपनी शक्ति जो है वो प्रकाशित करेंगे। जब हम गुरु चरणों में बैठते हैं तो क्या विशेष बात होती है? हमारे बिना चाहे बिना प्रयास किए हमारे को भगवान की स्फुरण स्फूर्ति स्वाभाविक होने लगती है। भगवान में ध्यान बिना प्रयास किए लगने लगता है। संत जन वैष्णव जन क्या करते हैं? वो देखने में मानव हैं, परंतु उनके निकट बैठते ही प्रभु की निकटता अनुभव होनी शुरू हो जाती है, प्राण शीतल होने शुरू हो जाते हैं, एक पवित्रता का संचार होना शुरू हो जाता है, एक मन जो है जो हर जगह भाग रहा था वो विश्राम पाता है। अब कछु नाथ ना चाहिए मुझे पायो परम विश्राम। जो संतों का आभा मंडल है उसके पास में यदि उसी के पास में कोई रहता है उस समय वो सब भूल जाता है, मैं कौन हूं, मुझे कभी कुछ चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये पसंद है, सब भूल जाता है और बिना प्रयास के भगवान में मन लग जाता है, बिना प्रयास के। संतों के अंदर जो भगवत शक्ति होती है उसे ऐसी तन मात्रा, ऐसा आभामंडल होता है कि वो इतना शक्तिशाली आभामंडल होता है कि कोई संसारी व्यक्ति भी आ जाए, बिल्कुल घोर संसारी, जिसने भगवान का नाम ना लिया हो, उसमें भगवत भक्ति का संचार हो जाता है। तो यदि भक्तों में हो जाएगा तो कौन सी आश्चर्य की बात, बिल्कुल संसारी व्यक्ति जिसको कुछ भक्ति ना पता हो उसमें भक्ति संचारित हो जाती। भगवान विभिन्न प्रकार से जीव का कल्याण करने के लिए अति उत्सुक रहते हैं, बस जीव थोड़ा सुलझ जाए, समझ जाए, शास्त्र में जैसे बताया है, आचार्यों ने जैसे मार्ग बताया है, बस उस अनुसार चले। ये सब जो आवागमन है जीव का पुनः पुनः इस संसार में, वो केवल इसी वजह से है कि वो अपने मन माने तरीके से ही कर रहा है इतने जन्मों से। इसको छोड़ के एक बार समझ जाए कि हमें क्या प्राप्त हुआ। वो जिसके जीवन में कोई खालीपन है वो केवल इसी वजह से है, श्री गुरु वैष्णव रक्ति ना हो लो हमारे, क्योंकि जिसमें कृतज्ञता अगर भरी रहेगी तो कितना उसको होगा, मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, वो इतना भरा हुआ है, इतना खुश है, क्योंकि वो भरा हुआ है, भगवान देखते हैं तो कितना खुश है, और भरते जाते हैं, वो पहले से भरा है और भरते जाते हैं, कितना इसमें कितनी कृतज्ञता है। कृतज्ञता अपने आप में दिव्य गुण है, वो भगवान देखते कितना भरे जा रहा है, वो और भरते जाए। ये सरल हृदय है, सरल हृदय से हम सरल हृदय के बन जाएं, कृतज्ञता से भर जाएं, तो भगवान और भरते रहें। करना तो उन्होंने, उनके लिए क्या मुश्किल है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प सो, आपके बनाए बन जाएगी पल पाव में। मेरे करने से कोटि कल्पों में मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं जैसे मर्जी नाम रगड़ लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे अपराधी मूर्ख है। आपके बनाए बन जाएगी पल पाव में, पल का पाव, पल होता है इतना सा, उसका पाव, उसका भी जरा सा अंश, उतने से इससे मेरे में बन जाएगी मैं, यदि मैं सुधर जाऊं, ठीक हो जाऊं, एक सरल हृदय, सरल सरल बन जाऊं, छोटा बन जाऊं। बहुत बड़े बन जाते हैं कभी कभी भक्ति में आके साधक। जैसे बताया गुरु वैष्णव रति ना हो लो मार, इसमें मुख्य सिर्फ ये नहीं है कि वैष्णव की सेवा या गुरु की सेवा, मुख्य है उनकी प्रसन्नता। कई बार हमारी ऐसी सेवा करते हैं कि वो प्रसन्न की बजाय अप्रसन्न है, तो हम देखें कि जब सेवा करें कि वो हमारे से प्रसन्न होए कि नहीं। यदि भक्तों के साथ में है तो मान लो 70 भक्त हैं, तो अगर हम 70वें पे नंबर पे नहीं है, अगर 69 पे भी हैं, हम अपने आप को मानते हैं तो हम रूढ़ रहेंगे बिहेवियर में, तो अति स्नेह प्रकाशित नहीं होगा 69 पे भी। और हम तो कई बार बहुत ऊंचे रहते हैं, मैं तो बहुत 70वें नंबर पे हमेशा रहे। जो वास्तव में भक्ति में प्रगति करा है वो हमेशा यही समझ पाता है, मोसो कौन कुटिल खल खाम, में से कुटिल कौन, में से पतित कौन, ये भक्ति में उन्नति का लक्षण है, में से मोसो कौन कुटिल खल खाम। सेवा करना हमेशा ये बात याद रखें, 70वें नंबर से ऊपर मत जाइएगा। अगर 70 भक्त हैं तो जरा से ऊपर गए तो क्रूरता, कठोरता, कठोरता आ जाएगी, तो सब क्योंकि सेवा मुख्य नहीं है, सेवा करके वो प्रसन्नता उनकी मुख्य बात। और हमारे सबके अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, क्रॉस कंपैरिजन है, पता नहीं क्या क्या अनर्थ है, और ये अनंत जन्मों से मस्ती कर रहे हैं हृदय में, नाच रहे हैं, और इनको पालन पोषण कर रहा है, हम स्वयं कर रहे हैं। अब हमें पता चला अरे ये काम क्रोध लोभ वगैरह ये तो बड़े खतरनाक हैं, इनको हटाना पड़ेगा, इनके हटे बिना तो भगवत भक्ति मिलेगी नहीं, तो अब हम इन्हें हटाने की कोशिश करें जिनको हमने पाला, तो वो हट जाएंगे आसानी से, और दौड़ के आएंगे, तुम हटा रहे हो हमें और तुम ही ने हमारे को इतने अनंत जन्मों से पाल के रखा हुआ है, तो तुम कहो कि डांटो हट जाए तो हटने वाले नहीं, तो ये कैसे हटेंगे, कैसे हटेंगे, ये गुंडे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब गुंडे हैं, ये अंदर बैठ गए हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे ऐसे, ये कैसे करेंगे, इनके पिताजी को लाओ, इनसे भी बड़ा कोई गुंडा वो इनको मार के भगाए तो वो खाली करेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो सबसे बड़े बलवान कौन है, नाम भगवान, भगवान का नाम सबसे प्रभावशाली, भगवान के समान प्रभावशाली है, तो जो भगवान नाम लेगा, हरि से बड़ा हरि का नाम, तो सारे गुंडे जो हैं वो भागेंगे, पर ये नाम जो होना चाहिए गुरु चरणों के अनुगत्य में, गुरु चरणों के आश्रय में, उनकी कृपा से उनमें भगवत भाव करके जो नाम लेंगे, निरपराध रूप से जो नाम लेंगे, वो नाम से ये सब भाग जाएंगे, नहीं तो ये और बढ़ेंगे। जब गुरु चरणों में वैष्णव चरणों में अपराध होता है तो ये बढ़ते हैं, ये बढ़ने का लक्षण क्या है कि घूमने खाने पीने में रुचि होगी, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा, मन में अशांति होगी, और यदि निरपराध भाव से नाम लेंगे तो ये आप खुद देखेंगे आपकी रुचि नहीं रहेगी, ये क्या करना है जैसे खा के ये कपड़ों का, ये रुचि नहीं रहेगी। जो हम श्लोक जानते हैं केवल जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहित परिवार, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि मेरे अंदर काम क्रोध मोह नहीं है, पर ये रियलाइज कैसे होगा, ये रियलाइज कैसे होगा, जिस मात्रा में प्रसन्नता होगी गुरु वैष्णव की कृपा से हमारे अंदर बल आएगा जिससे हम सबको हटा पाए। एक ही उपाय है, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वो आर, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वो आर, ओहे वैष्णव ठाकुर, यदि करुणा ना हुई तो मैं प्राण नहीं रखूंगा। देखिए करना कुछ भी नहीं होता, बस जो कर रहे हैं वो नहीं करना होता, कि सरल बन के भगवान का नाम लें, कुछ देर पढ़ें और गुरु ने क्या बोलना है, ये बोलना है भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करो, और क्या करना, और इसके अलावा कुछ गुरु ने कभी कुछ करना नहीं, और यही है कि भगवान को हृदय से पुकारे। देखा जाए तो करना कुछ भी नहीं है, हमने इतना कॉम्प्लिकेट लेकिन वो ये करके ये बात हमने सुनी है कि ऑल ओवर थॉट्स आर गार्बेज, कैसे रियलाइज होगी ये बात, नहीं गुरु वैष्णव की प्रसन्नता से रियलाइज ऐसे नहीं होगी, ये सब थ्योरी रहेगा, नहीं तो हृदय से प्रार्थना करें युगल सरकार के लिए, विल सो श्री हरि प्रिया दो हमें अनुचरी जानिए, विल सो श्री हरि प्रिया दो हमें अनुचरी जानिए, महामोहन महल की निज टहलनी करी मानिए, महामोहन महल की निज टहलनी करी मानिए, विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए, महामोहन महल की निज टहलनी करी मानिए, ओ विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए, महामोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। क्या क्या प्रार्थना होनी चाहिए सतत हृदय से, क्या होनी चाहिए प्रार्थना, विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए, हे मेरे प्रिया लाल, हे मेरे श्यामा श्याम, तुम निरंतर विलसते रहो, विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए, मुझे अपनी अनुचरी किंकरी मंजरी सखी समझ लो, बस महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानी। महा मोहन महल जो आपका कुंज निकुंज है उसकी निज टहलनी। भाई कुंज में तो कोई निज व्यक्ति टहलेगा ना, टहलना टहलनी टहलनी जो स्त्री रूप में टहलने वाली, निज टहलनी करी मानी। विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनचरी जानिए। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। ओ विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनचरी जानिए। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं श्यामा श्याम से कि विलसो 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 सदा विलसो, विलसते रहो तुम्हें क्या मिलेगा। ये भगवत राज्य है, खाए और तृप्ति किसी और को होती है, खाते वो हैं पेट हमारा भरता है। अरे बोल रहे हैं आप विलसो, तुझे क्या मिलेगा, मेरा तो पेट भर जाएगा क्योंकि मेरा पेट तो आपके भरने से भरता है। खाते आप हो पेट मेरा भरता है। और मेरे सामने कोई लज्जा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, निज हमें अनुचरी जानिए। हमें क्या जानो, अपनी सखी मानो, अनुचरी मानो, मंजरी मानो। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। अपने महा मोहन महल जो है आपका कुंज है निकुंज है, निज टहलनी मैं टहल सकूं कभी भी, जो ललिता विशाखा नहीं कर पाए वो मैं कर सकूं। इतनी छोटी सी प्रार्थना में सब कर दिया, क्या कर दो मेरे लिए, जो किसी के लिए नहीं करते वो मेरे लिए कर दो। पर हृदय से ये प्रार्थना होनी चाहिए, बाथरूम गए हो, ब्रश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी। ऐसे महात्मा थे, वो ऐसे दातुन कर रहे थे, वो दातुन कर रहे हैं, वो पद गा रहे थे, जैसे हम ये गा रहे हैं वो दातुन करते पद गा रहे हैं। वो पद गाते उनको कई घंटे हो गए, वो पद में डूबे हुए हैं, भगवान के दर्शन साक्षात हो रहे हैं और पूरा खूनन खून उनके कपड़े सब कोई मुंह पूरा खून जबड़े। कितनी देर आपके दातुन को बचा पाएंगे, वो तो विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मान, खूनम खून हो। हमने मुझे हाँ हमारे साथ कब होगा ऐसा, एक बार ही करके अगर ये हो जाए तो कितने भाग की बात है, एक ब्रश करने में भगवत प्राप्ति हो जाए। तो हमें करते रहे कोई पदगान या कुछ जो कुछ बोला हो, विल सो श्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए। महा मोहन महल की निज टहलनी करी मानी। बोले मैं विलसूंगी तो तुझे क्या मिलेगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्यों, अति उदार रखत नाही सार, अति उदार रखत नहीं 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 सार, श्री हरि प्रिया परम सुख सार, श्री हरि प्रिया परम सुख सार, श्री हरि प्रिया परम सुख सार, अति उदार रखत नहीं सार, अति उदार रखत नहीं सार,
अति उदार राखत नहीं सार, अति उदार राखत नहीं सार, झुकी झुकी देत लेत अधरा अमृत, 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 विल सश्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए, विल सश्री हरि प्रिया दो मुझे अनुचरी जानिए, महामोहन महल की निज टहलनी करी मानिए। अति उदार राखत नहीं सार, ये हमने क्यों गाये पद, कि जो विलसते हैं तो आनंद उनको होता है ऐसा नहीं है, वो इतने उदार हैं सार अपने पास लेते, वो तुमको दे देते, जो उनको मिल रहा है तो ये थोड़ा ना वो खुश हो कि हाँ तुम मेरी सेवा करो पंखा झड़ो मैं खुश हो रही हूं तुम ऐसे पंखा झड़ते हो, नहीं 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 नहीं, उनसे ज्यादा तुमको मिलता है, वो सार ही नहीं रखते ना, राधा रानी का सार रहता है श्री कृष्ण के दर्शन, राधा रानी के दर्शन साथ में सेवा सुख, रति रसरंग में केवल वो नहीं भीग रहे होते, मैं अनुचरी मंजरी भी भीग रही होती है साथ साथ में,
अति उदार राखत नहीं सार, 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 अति उदार राखत नहीं सार। देखिए भगवान को प्राप्ति करने का बड़ा सरल सा उपाय है, भाई भाई रो दो भगवान के लिए, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, ये रोया कौन है मेरे लिए, ये तो सब मांगने वाले होते हैं मेरे यहाँ, हाँ। तो एक बार ये यदि रो देगा कोई भी रो देगा तो भगवान के सामने दौड़ते हुए चले आएंगे, अब बोले हमको तो रोना आता ही नहीं है, हाँ तो क्या करें। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भगवान इसका क्या लक्षण है कि किसी को भगवत प्राप्ति हो गई है, इसका लक्षण क्या है, भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा, तो राम जी ने उत्तर दिया,
मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बबे नीरा।
भगवान राम ने बोला लक्ष्मण को कि जो मेरे गुण गा के जिसका शरीर पुलकित हो जाता है, जिसके नयनों से अश्रु धारा बहती है, वाणी गदगद हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसको प्राप्ति हो चुकी है। तो यदि हमें प्राप्ति नहीं हो, यदि हम कुछ जानते हो कि किसी को प्राप्ति हो चुकी हो, तो उस व्यक्ति की सेवा में लग गया, उस व्यक्ति तो उनकी कृपा से वो हमें भी क्रंदन आ जाएगा कि हम भी भगवान के रोएंगे और तत्क्षण वैसे ही दर्शन कर पाएंगे।
झुकी झुकी देत लेत अधरामृत, झुकी झुकी देत लेत अधरामृत, झुकी झुकी देत लेत अधरामृत।
करना सिर्फ दो ही काम है, भगवान का नाम लेना है ज्यादा से ज्यादा, इतना ज्यादा कि जब तक हमारे इतना नाम लेना है कि बिना माला के जीभ रुके नहीं। एक बार एक संत थे, वो इतना भगवान का नाम लेते कि बाथरूम में भी जोर जोर की आवाज आती थी उनके, जब वो मल मूत्र त्याग कर रहे होते थे,
तो कुछ संतों ने शिकायत करने गुरु जी को, गुरु जी ये क्या है, ये भगवान का नाम इतना ज्यादा लेते हैं, ये कोई एटिकेट होने चाहिए कि तो भगवान के मल मूत्र लेते हुए भी ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और बोला ठीक है, मना करा, ए शिष्य इधर आओ, ऐसे नाम मत लिया करो बाथरूम में। बोले गुरु जी मेरी आदत पड़ गई है, रुकता नहीं है। बोले जी पकड़ लेना, ठीक है गुरु का प्राण है, ठीक है। फिर वो आदत बस फिर से जीभ पकड़ ली उन्हें, और जीभ की पेड़ पकड़ा, पकड़ के देखो अपनी जीभ छूट जाएगी, और फिर नाम लेना शुरू हो गए। वो नाम ले रहे हैं तो गुरुवज्ञा हो रही है, नाम लेने में भी गुरुवज्ञा हो रही है। उन्होंने अपनी जीभ को ऐसे पड़े कुछ ना गांठ करके खींच दिया, और सोचो जीभ में कितनी शक्ति होती है, बाहर निकल आएगा तो बेहोश होकर गिर जाए क्योंकि नाम गुरुवज्ञा हो जाएगी। जीप खींच के भाग आए थे लोग, देखा ये क्या हुआ, बोले गुरु जी आपने कहा था नाम लेना, मैंने कहा तुम पूरा दिन सुबह शाम रात जितना नाम लेते हो लेते रहो, यही तुम्हारी सेवा है। तो ज्यादा से ज्यादा नाम लें, गुरु में भगवत भाव करके नाम लें, नहीं तो सब विफल हो जाएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, करना धरना कुछ नहीं है, और भगवान को पुकारना है। रोक बाबा से भी वार्ता हुई थी कुछ दिन पहले, तो वही बात, क्योंकि नाम लेना है, पुकारना है। देखो जब महात्मा जन संत जन भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारी तरह नाम नहीं लेते, वो पुकार रहे होते हैं हमको। हम नाम ले रहे होते हैं, वह पुकार रहे होते हैं। जो पुकार रहे होते हैं तो वो आए हुए होते हैं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त जैसे अध्ययन करते हैं, वो सामान्य भक्तों का अध्ययन नहीं होता। भगवान के भक्त जब अध्ययन करते हैं तो भगवान को बोल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ये ऐसे है ये ऐसे, मैंने इसलिए ऐसे बोला, मैंने इसलिए ऐसे बोला, वो बोल रहे होते हैं। जब भक्त अध्ययन कर रहे हैं संत, तो भगवान बोलते हैं ये बात नहीं है। जब वो अध्ययन नहीं भी करो तब भी भगवान बोल रहे होते हैं, उनको यही काम के लिए तो भेजा है उनको, उनके डायरेक्ट वो अध्ययन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, अध्ययन कर नहीं कर रहे तो बोल रहे हैं, सो रहे हैं तो भी बोल रहे होते हैं। ये उत्कृष्ट महिमा होती है। सामान्य व्यक्ति का नाम लेना अध्ययन करना, या महापुरुषों का संत जनों का नाम लेना अध्ययन करना, ये बिल्कुल अलग अलग श्रेणी की बातें हैं। तो हम अध्ययन करें, रोज अध्ययन करें, नाम लें, और कुछ अगर पद याद हो जाए तो गुनगुनाएं, और गुरु वैष्णवों का महत्व जीवन में समझें, उनकी कृपा प्रसाद से ही भगवान में मति लगेगी। जैसे एक यहाँ पे भक्त हैं, उनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है, तो उनकी एक बात हमें अच्छी लगी थी। उनके पिताजी जैसे सामान्य पिताजी होते हैं कि कोई भगवत भक्ति में लगता है तो अगेंस्ट होते हैं या वो होते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों कभी मिले भी नहीं उनसे, हम तो जानते भी नहीं कौन है वो, तो उनको पता नहीं कहीं से पता चला होगा कुछ भी, तो हमारे प्रति उनका अच्छा भाव नहीं रहा। तो उनके जो संतान थी वो यहाँ पे आश्रय लिया हुआ है, उन्होंने दीक्षा भी नहीं हुआ पर उनको आश्रय है। तो हमने ये सोचा कि कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने क्या किया कि पिताजी गलत बोलते थे गुरुजी के संबंध में उनके, तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया। बोलो यही मेरे श्री गुरु चरण पदमा केवल भगत ही सदमा समझ आ चुका, तो किसी से बिना बात के कुछ भी किए घर ही छोड़ दिया, और जेब में पैसे भी नहीं, और पता नहीं ऐसे कहीं पे भी किराए पे रहा। तो ये भक्ति जब देखते हैं भगवान कि व्यक्ति क्या कीमत अदा करने को तैयार है, तो वो प्रसन्न हो जाते। ऐसे क्रियाकलाप व्यक्ति करे कि भगवान खुश हो जाए, फिर क्योंकि पिताजी जो कुछ गलत शब्द बोलते थे उनको लकवा हो गया, परिणाम मिलता है कई बार, दंड मिलता है निंदा इत्यादि का, लकवा हो गया उनको, तो उन्होंने कुछ किया तो फिर वो जैसे वो हमारी छवि देख के माफी क्षमा याचना भी कुछ करते थे हमने जो सुनने में आया, तो फिर उनका लकवा ठीक हुआ। हमको ये बात अच्छी लगी कि वो जो भक्त हैं उनकी जेब में पैसे भी नहीं, पर क्लैरिटी कितनी है ना। ये भगवान रामचरित मानस की चौपाई हमें याद आई थी कि जिनके प्रिय ना राम वैदेही त्यजति बैरी कोटिसम यद्यपि परमस नहीं, ये मानस की चौपाई है। इसका मतलब यह है जिनके प्रिय ना राम वैदेही, हमारे इष्ट देव जो हैं भगवान गुरु जो हमारे इष्ट हैं, जिनके प्रिय नहीं है, तो उनका व्यक्ति त्याग करने से चाहे कैसे त्याग करेंगे, कोटी बैरी मान के, ये वो तो बैरी आदमी, गंदे आदमी है, उनका बैरी मैं त्याग गई, यद्य भी परम स्नेही, चाहे बहुत स्नेही क्यों ना हो, माँ बाप भाई बहन क्यों ना हो, वो त्याग करना चाहिए यद्य भी परम स्नेही। ये रामचरित मानस की वाणी है। तो हमने देखा कि उन्होंने वाणी पढ़ी नहीं, उनको क्या पता मानस क्या, उन्होंने कोई शास्त्र पढ़े, उनको पता कि मानस कुछ होता है, पर स्फुरित हो गया। एक चीज और अच्छी हमें लगी थी, एक भक्त एक और हैं, ये हम उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि अनपढ़ जैसे हैं थोड़ा, मतलब पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, तो शास्त्र कैसे हृदय में स्फुरित होते हैं उसका ये हम बताना चाह रहे हैं। हाँ, उनको ज्यादा पढ़ाई नहीं आती, और हमने क्या बताया था, श्रीदाशोध मिश्र बता रही है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, यस्य कथिता प्रकाशन्ते महात्मनः, जिस मात्रा में गुरु में भक्ति है वैसे ही यदि भगवान में भक्ति, वैसे ही गुरु में भक्ति हो तो सारे शास्त्र खुल जाते हैं बिना पढ़े। अनपढ़ व्यक्ति श्लोक उच्चारण करना शुरू कर देता है, ऐसे हमारे पास उदाहरण है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सेवा करते हैं यहां, तो इनको इस बात से रोना आया कि पूर्ण रूप से शरणागत होना है, इन्होंने की किताबें नहीं पढ़ी, अंदर से क्या पूर्ण रूप से शरणागत होना है, तन को अपने ये लगाता हूं मैं, मन से अपनी इच्छा पूर्ति करता हूं, और धन को पूर्ण रूप से गुरुदेव की सेवा में नहीं लगाता, मैंने इन चीजों पर मनन किया। सोचिए, अनपढ़ व्यक्ति है और पता भी नहीं है, और क्या मनन हो रहा है, तन को मैं अपने लिए लगाता हूं, तन हमें क्या लगता है, मैं तो बहुत सेवा करता हूं, उनको लग रहा है मैं तन को अपने, जबकि सेवा सबसे ज्यादा करते होंगे, और मन भी, मन को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लगाता हूं, दो रोटी खाते हैं, और धन को, धन है भी नहीं पहली बार, और जो भी है वो भी सेवा में रहता है, फिर भी क्या है, धन को पूर्ण रूप से गुरुदेव की सेवा में यूज नहीं करता। तो हम पे हैरान हो गए बात करते, तो हमको ये श्लोक याद आया, जैसे एक भक्त का सुना तो श्लोक याद आया, जिनके प्रिय ना राम वे रही मानस का, तो इन भक्त का जब हमने पढ़ा तो हमें यही श्वेताशोक उपनिषद का श्लोक याद आया, यस्य देवे परा भक्ति, एक गुरु जी की आज्ञा मान के जो सेवा करे अपने आप शास्त्र खुलना शुरू होगा बिना पढ़े। और एक और बात अच्छी लगी, जैसे जिन्होंने जिन्होंने घर छोड़ा, उनके पिताजी गलत कह रहे थे, उन्होंने ये नहीं किया कि प्रकाश कर रहे, देखो मैंने ऐसे किया, मैं किसी को भी नहीं बोला, एक उनके जिनसे बात होती उनको हल्का सा बोल दिया, उनकी कृपा से उन्होंने हमारे को, और को भी नहीं पता, और उनको ना बताते तो किसी को भी नहीं पता चल रहा। बहुत अच्छा है। और हम जब कोई सेवा करें तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भक्त में से कुछ स्वीकार कर रहा है, कोई भी संत, तो मेरे पे कितनी बड़ी कृपा कर रहा है, अब सहर्ष सेवा करें, हर्षित होकर कितनी कृपा हो गई कि मेरी कोई सेवा स्वीकार कर रहा है, परम देने से, अरे मेरा उद्धार का कोई चांस हो गया। सबको ये सेवा नहीं मिलती है, बहुत भाग्यशालियों को वैष्णव जनों की सेवा मिलती है, बहुत भाग्यशाली, सबको नहीं मिलती, सहर्ष परम दैन्य से, और अपना उपकारी मानते हुए, मेरा उपकार होगा, ये मेरा कुछ, मेरे जैसे गंदे आदमी का कोई कुछ स्वीकार करे, तो ऐसे भाव से हमें सेवा तो कर रहे हैं, पर ये भावना के साथ में सेवा करनी है, वस्तु जब अर्पण करें इस भावना से करें, अधम, यही नरोत्तम ठाकुर भजन में भी बता रहे हैं कि ठाकुर वैष्णव गण केश धरी मोरे करो पार, केश धरी मोरे करो पार, मेरे बाल पकड़ के मुझे बाहर निकाल दो, हे वैष्णव ठाकुर मेरे बाल पकड़ के मुझे बाहर निकाल दो, मैं संसार शरीर को बिल्कुल भूल जाऊं और हर समय प्रियालाल को याद रखूं, ये यही है, और ये उन्हीं को ही होगा जो परम दैन्य से अधम होके गुरु वैष्णव की सेवा करके उनको प्रसन्न करने का प्रीति प्रसाद प्राप्त करे। और जो भी गुरुदेव मंगल स्वरूप हैं, वो जो भी करते हैं वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, चाहे हमारे को सेवा दें ना दें, वापस ले लें, क्योंकि उनको पता है हमारा मंगल कैसे होगा, कितनी चीजों से हमारा अमंगल हो सकता है, अहम बढ़ सकता है, तो वो चीज वापस ले लेते हैं। एक संत हैं,
गौड़िया हैं, ब्रज में हैं, मुक्त हैं, जब वो शिष्य थे अपने गुरुजी के, वो जंगल में रहते थे गुरुजी और वो, और जंगल 50 साल पुराना। आपको पता है जंगल क्या होता है, मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं, बैठते थे। और उनका रोज का आहार क्या होता था, मैक्सिमम सूखी रोटी। एक बार उन्होंने किसी को बोल दिया था कि हरी मिर्ची के लिए, तो उन्होंने इतनी डांट पड़ती, हरी मिर्ची साधु की हरी मिर्ची खाएगा, कोई सब्जी नहीं सिर्फ सूखी रोटी। तो इतने दिन चलता जा रहा चलता, एक दिन ना गिरिराज गुरुजी के लिए वो पानी भर के भी लाते थे, पानी स्नान करने कहां से भर के लाएंगे, कोई घर के बाहर मोटर थोड़ा लगी है स्विच ऑन कर दो पानी, वो कहीं दूर से लेके आते थे, रोज की सेवा है। गुरुजी कोई फेमस नहीं है, जंगल में आने वाले गुरुजी ऐसे गमछा पहन के बैठे हुए, और वो भी उनका बस तो खैर अच्छा, उनकी रहने की जगह थी उनके गुरुजी की छोटी सी कुटिया, इनकी रहने का भी कुछ नहीं था। ये अगर रोटी भी जो मधुकर की थैली में रहते थे उसको पेड़ पे टांग देते थे, रखने की जगह नहीं, और गिलहरी खा लेती जो बची हुई होती थी। गिलहरी का महाप्रसाद, ब्रज की गिलहरी का महाप्रसाद पाते थे जितना भी बचा होता था। तो देखिए गुरु सेवा में निष्ठा कितनी थी, हम ये बता रहे हैं कि एक बार गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए आया, हलवा पूड़ी लड्डू और ये सब आया, तो भोग लगाया गिरिराज जी को, और गुरु जी ने जो पाया जो भी किया, उसके बाद इनको लगा कि चलो इतने दिन हो गए अपने को सब्जी खाने को नहीं, देखी नहीं सब्जी इतने दिनों से, बनी हुई सब्जी देखी नहीं, तो सब्जी हलवा भोग लगाया गिरिराज जी को। गुरु जी कहेंगे इतनी सेवा करता है मेरा शिष्य, पानी भर के लाकर खा लो। गुरु जी के माँ ने पास में कुत्ता भी होता था, गुरु जी ने बोले ना ये कुत्ता बड़ा भूखा होगा, इनको दे दो ये हलवा पूड़ी और लड्डू इनको। तो जो हम होते तो क्या सोचते कि गुरु जी हमारा कितना आदर सत्कार और पता नहीं क्या क्या करेंगे कि लड्डू पूड़ा वो कुत्ते को दे दिया। ये उनकी कृपा है, ये उनकी बहुत कृपा, ये कोई क्रूरता नहीं है, गुरु भी मुक्त है, कृपा है उनकी। और फिर एक बार क्या हुआ, बहुत बीमार थे जैसे होते ना ब्लड में बवासीर, ऐसा कोई बीमारी था, वो पड़े हुए हैं, कोई कुटिया भी नहीं है, पड़े होते हैं ऐसे ही कहीं पड़े हुए हो। गुरु जी के वहां छोड़ के वृंदावन चले, वो जगह छोड़ गए। हम सोचते हैं गुरु जी हम बीमार है, गुरु जी हमारे लिए ये करते वो करते, हम ये कोई सोचते, उनको छोड़ के चले गए, उनको वो रोते रहे। क्योंकि उनको पता ना श्री गुरु चरण पद्मा केवल होते थे, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी मेरा जो भी करे पीटे मारे कुछ भी करे एक बारी ना पूछे पर मेरे को तो जो प्राप्त होना यहीं से प्राप्त होगा। तो गुरु जी के भागे वो वहां गए, तो गुरु जी फिर वहां पे उनको देख के थोड़ा मुस्कुरा दिए। तो हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि ये इसमें ऐसा देखने में लग रहा है कि कितनी क्रूरता है, कितनी क्रूरता है, पर ये क्रूरता नहीं है, ये कृपा है। क्योंकि तो हमारे इतने अनर्थ हैं कि उसके ऑपरेशन की कई बार बहुत जरूरत होती है, बातों के कई बार नहीं समझ आती बातों से बातें। तो जब शास्त्रों का समझानी होती है, जैसे हमने कितने बार समझाया जाई ना चाहिए कबहू कछु, कुछ नहीं चाहना चाहिए, ये गुरु जी इससे समझा रहे हैं उनको, कुछ मत चाहो, रोटी के साथ सब्जी भी मत चाहो, जाइए ना चाहिए कबहू कछु, इससे वो सिखा रहे हैं। अगली बात क्या सिखा रहे हैं, भोजन से आसक्ति नहीं हो किसी प्रकार की। हम तो क्या चाहते हैं, ये वाले प्रकार के बिस्कुट, वहां के छोले भटूरे, वहां के समोसे और वहां का ब्रेड और वहां का ये और पता नहीं क्या क्या। और हेल्थ से अटैच मत हो, हेल्थ कभी खराब हो कभी ठीक होगी, कितनी लर्निंग है इसके अंदर, हेल्थ खराब हो छोड़ के चले गए, बहुत बहुत अच्छे। और अहंकार दलित कि पूछते ही नहीं है, कोई भी सेवा कर रहे हैं, हम सोच रहे गुरु तारीफ करेंगे बड़ी अच्छी सेवा करी है, 6 घंटे कर दिया सेवा, अहंकार दलित कर रहे हैं, मतलब क्या बोले, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट, तुम बिल्कुल दास भाव में स्थित कर रहे हैं, बिल्कुल करुणा ना करके करुणा कर, मंगल स्वरूप गुरुदेव हमेशा मंगल करेंगे, चाहे वो अब मां है खींच के थप्पड़ मारती है बच्चे को जब वो मिट्टी खाता है, तो उसको उसको उसे कोई दुश्मनी है, पता है ना तेरा नुकसान होगा, अगर शरणागत होगा तो गुरु भी मारेगा, पर अगर कोई होगा आई एम, इससे पता चलता है कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट दासोस्वी व्यक्ति स्थित हो जाता है, किसी का सेवा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं गुरु जी कोई फेमस है,
ए लंगोटी पहने गुरु जी, लंगोटी भी हम ज्यादा बोल रहे हैं, टाट समझते हो, टाट पेटी के ऊपर टाट ब्राउन कलर का होता है, टाट बोरा, बोरा पहनते हैं गुरु जी, तो ये तो चेहरा है ये बोरा पहनने वाले गुरु जी इतने क्या समझते हैं अपना ना, साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र, साक्षात हरि, टाट पहने गुरु जी हैं पर साक्षात हरि।
और भी कितने अनर्थ उनके इस कृपा से दूर हुए जो कि बातों के बोलने से दूर नहीं है। ये ना भजन कोई सीमित नहीं है कि आपको हरे कृष्णा करना है कुछ, जैसे मान लीजिए हमने आपको पद बताया कुछ कि आपके पद आप जैसे सुबह उठे हो बेड पे ही हो आप एक घंटा ये पद आपके मन में चल रहा है, अति रापत नहीं सा, सिर्फ पांच शब्द हैं आपके मन में, आपके पूरे मन को हृदय को पूरा पवित्र कर देगा, पूरा पवित्र। आप बेड पे बैठो आप अचानक 4 बजे नींद खुल गई तो 4 से 6 क्या कर रहे हो, बिल सशी हरि प्रिया मुझे, आप घर में किसी को नहीं पता, आपके साथ जो लेटे हैं उनको भी नहीं पता, आपकी वाइफ हो बच्चे हो कोई उनको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आपका चीज ऐसा साफ होता रहेगा, ऐसा साफ आप सोच भी नहीं सकते। एक कुछ चीजें याद कर लो और जैसे रोड पे चल रहे हो तो ब्रश करने में किसी को पता है आप क्या कर रहे हो, आप गाओ गुनगुनाओ, जरूरी नहीं है कि नाम एक प्रकार से लेना है, मम गुण गावत जो मेरा गुण गाता है, ये राधा रानी का गुण है कि राखत नहीं सार, गुण गाओ। हम कई बार ही करते हैं उठे हैं उठे नहीं, पर 2 घंटे सिर्फ वही चल, 2 घंटे सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही बैठे हो, बैठे नहीं बैठने की लेटे हो, जय सचिनंदन जय गौर हरे विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी अमाय प्राण धन नदिया बिहारी अमार प्राण धन नदिया बिहारी। कई घंटे से चलते रहे, उठे ना उठो ही मैसे, भजन सिर्फ माला से नहीं होता, ये हृदय का विषय, बस कितना भूत सवार हो गया, नंद का पूत लग गया, भूत नहीं नंद का पूत नहीं भूत है, ऐसे कुछ एक श्लोक बोलते हैं लोग ब्रज में, नंद का पूत ये भूत ऐसा कुछ है। हाँ। हर समय ये चले या राजत रिल सो श्री हरि प्रिया दो या छुपी छुपी दे तले चलाते रहो, इसको चलाते रहो चलाते रहो, तब तक चलाते रहो जब तक आपको टाइम का भान ना रह जाए, आपको नहीं पता चला 4 घंटे हो, समझ रहे हो, पंक्ति एक ही है पर हो क्या रहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गा रहे हैं। अच्छा ये जो है ना छुकी छुकी देत लेत अधरामृत, ये जो मंजरी सखी है ये निवेदन करती है, राधा रानी आप बोलो मेरे एक बात मानोगी, तुम्हारी बात नहीं मानोगी तो किसकी मानोगी, अच्छा तो मैं एक काम करो, क्या करूं काम, राजा रानी को बोलती है मंजरी सखी झुकी झुकी देत लेत अधरामृत, झुकी झुकी देत देत अधरामृत, झुकी झुकी देत लेत अधरामृत। गुरु जी का यही काम है, भगवान के स्वभाव से हमारा परिचय करवा रहे हैं, उनका स्वभाव क्या है, अति उदार राखत नहीं सार, 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 अति। ये स्वभाव को गुनगुनाते रहो, उनका स्वभाव है, ऐसे करके पुकारोगे तो वो जल्दी आएगी, ऐसे राधा बोलना या ऐसे बोलना बड़ा भेद है, कई संत मानते हैं राधा भी बहुत फॉर्मल है बोलना, समझ रहे हो, एक नई बात सुन लो, राधा भी बहुत ऐश्वर्य रूप में बोलना हो जाता है कई बार, क्योंकि हम तो स्वामिनी को पुकारते हैं ना, हमारी कोई जगन माता राधा तो है नहीं, कोई स्वामिनी को पुकारते हैं ना, मेरी प्यारी प्यारी जी को पुकारते हैं।
झुकी झुकी दे तो ले तो झुकी झुकी दे तो ले तो झुकी
जो भजन पैटर्न से आप करते हो, ब्रेक हो जाए तो चिंता मत करो, ये करो, जो आप 16-64 माला जो भी करते हो कोई बात नहीं, ब्रेक होता है तो, अगर इसमें 2-4 घंटे 5 घंटे मन लग गया तो यही असली में भजन, समझ लो, असली भजन क्या है कि डूब गए ना, कोशिश करो। कई बारी ऐसे जय सच्चिदानंद जय गौर हरि या ये किसी चीज में डूब जाओ, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, तो हम बोल रहे थे ना ये तो 192 माला तो ऐसी हो जाती है, क्योंकि 192 5-6 घंटा माला करना इज नॉट अ बिग थिंग, क्या है सुबह उठो 3 बजे 9 बजे तक तो हो गए, फिर नाश्ता करो आराम से, तो स्वाद आएगा ना, अगर स्वाद आएगा तो करोगे, रसगुल्ला ये खाया अच्छा लगता है दूसरा तभी तो मांगते हो, इसलिए और नाम जो नाम लेता है उसका एक ही फायदा होता है, और नाम लेना शुरू करता है, फिर और नाम लेता है, वो यही करता है, कब तक नाम लेता है, वो तब तक नाम लेता है जब तक समय बिल्कुल गायब हो जाए, फिर गिनना पढ़ना सुनना सब खत्म, बहुत समय पर चल रहा है, वो लग रहा है गुरु जी बात कर रहे हैं, गुरु जी तो आपको लग रहा है बात कर रहे हैं, तो वो अंदर चले ही जा रहा है, वो पटल में चले जा रहा है, मानस पटल में
जो की हाँ
गुरु जी बात कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा
है, जो की
लग रहा है बहुत ध्यान से बात कर रहे हैं,
जो की
भर जाए। गुरु जी की यही सेवा है कि भगवान में मन हम लगाए, उसे करने के लिए गिनती करनी थोड़ी बंद करके थोड़ा बेगिनती का डूबना शुरू करें, घंटा 2 घंटे को कभी ट्राई करके देखें, या संडे को तो बोले क्या सेवा करें बता दें, सेवा संडे को ये सेवा उठो नहीं जल्दी, कोशिश कर रहे हैं कैसे कुछ शब्द बोल के सार बता पाए।
अति उदार राखत नहीं सार,